अभी आप कहाँ बैठे हैं? हाँ बिल्कुल, किन्होंने जवाब दिया? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, ब्रजवासी ही बोल रहे हैं। हमें ये सोचना है ये यमुना है और ये सब ब्रज है, ब्रज भूमि है, वृंदावन है, और ये सब पेड़ जो हैं सब कल्प वृक्ष हैं। इनमें से थोड़े कदंब वृक्ष हैं, तमाल वृक्ष हैं, और यहाँ वहाँ सब गाय भी घूम रहे हैं, कहीं गोपगण हैं, कहीं गोपियाँ हैं, और कृष्ण कहीं अपनी लीला कर रहे हैं। तो ये हम उस स्थान में बैठे हैं, बहुत ही रमणीय वातावरण है, परंतु हमें केवल प्राकृतिक सौंदर्य से कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया का प्राकृतिक सौंदर्य ये तो भगवान के सौंदर्य का एक विकृत रूप है। तो अगर भौतिक जगत में ये विकृत रूप भी इतना सुंदर लग रहा है, तो सोचिए कि श्री कृष्ण के सानिध्य में, भगवान के धाम में रहकर कितना और आनंद अनुभव होगा। तो हमें हर जगह, हर स्थान में, हर अवस्था में, हर वस्तु का संबंध, हर परिस्थिति का संबंध भगवान कृष्ण से करना चाहिए, देखना चाहिए। जब ऐसी हमारी दृष्टि हो जाएगी कि हर स्थान का महत्व इसलिए है कि ये कृष्ण से संबंधित है, और ऐसे स्थान में रह के हम भगवान श्री कृष्ण का के बारे में श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो हमारी चेतना बहुत अच्छी तरह से आगे विकसित होगी कृष्ण भावनामृत में। जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार संन्यास लेने के पश्चात वृंदावन की ओर बढ़े थे, तो उस समय वो गंगा नदी तक पहुंचे। गंगा नदी, उन्होंने नदी को देखा, क्योंकि वो बिल्कुल भाव अवस्था में थे, उनको ये याद नहीं रहा कि ये गंगा है। उन्होंने नदी देखी, वो वृंदावन के भाव में थे, तो उन्होंने सोचा ये तो यमुना है, और सीधा यमुना में या अर्थात गंगा में कूदने वाले थे। उस समय नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका और कहा, नहीं, हम आपको ले जाएंगे, आप चिंता नहीं करना। और फिर आगे उनको नौके में बिठाया और शांतिपुर की ओर ले गए, जहाँ की अद्वैत आचार्य निवास किया करते थे। अद्वैत आचार्य को आगे से उन्होंने संदेश भेज दिया था किसी भक्त के द्वारा कि महाप्रभु आ रहे हैं, इसलिए अद्वैत आचार्य ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी थी। और जब गंगा और जमुना दोनों प्रयाग में मिलते हैं, तो फिर दोनों एक नदी हो जाते हैं, परंतु एक भाग जो है, एक दिशा वो गंगा है, दूसरी दिशा एक ही नदी की वो जमुना है। तो जब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हाँ, हम आपको यमुना में ही ले जा रहे हैं, चिंता नहीं करो, मेरे साथ आओ, तो वो झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उस दृष्टि से देखा जाए तो गंगा यमुना दोनों मिलते हैं, तो जिस भाग में पानी में वो जा रहे थे वो यमुना जी का हिस्सा था। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने सिखलाया है कि कैसे हमें हर स्थान, परिस्थिति और व्यक्ति का संबंध श्री कृष्ण से देखना चाहिए। तो यहां भी जब हम इस बहुत ही रमणीय स्थान में बैठे हैं, हमें केवल इस सौंदर्य से प्रभावित नहीं होना है, इस सौंदर्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण से करना है, और इस सौंदर्य का, इस वातावरण का लाभ उठाना है, और तीव्रता से भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, उनका उनके बारे में स्मरण, श्रवण, कीर्तन आदि करने के लिए। इसलिए हम कह रहे थे कि ये सोचिए कि ये यमुना है और और ये सब कल्प वृक्ष हैं। अब थोड़े दिनों में नरसिंह चतुर्दशी आएगी, तो हमने सोचा क्यों ना भगवान नरसिंह देव की चर्चा शुरू करने के पहले उनके भक्त की चर्चा करें, क्योंकि भगवान से पहले हैं उनके भक्त। भगवान अपने भक्तों से अलग नहीं किए जा सकते। जिस प्रकार से राजा को अपने प्रजा से अलग नहीं किया जा सकता, अगर राजा के पास कोई प्रजा न हो तो किस प्रकार का राजा हुआ वो? अगर सूरज के पास कोई किरणें नहीं हैं तो सूरज होने का लाभ क्या है, मतलब क्या है? उसी प्रकार से भगवान तो आत्मा राम है, अपने आप में संतुष्ट हैं, परंतु उनकी शोभा बहुत बढ़ती है जब वो अपने भक्तों के संग में होते हैं। भगवान के भक्त ही वास्तव में भगवान के आभूषण होते हैं, नहीं तो साधारण तौर से जो भगवान आभूषण पहनते हैं वो ठीक है, वो आभूषण भी व्यक्ति हैं भगवान के धाम में, इसलिए वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, परंतु वो आभूषण कृष्ण के ऊपर होने से ज्यादा सुंदर होने लगते हैं। साधारण तौर से आभूषण पहनने वाला व्यक्ति सुंदर दिखाई पड़ता है आभूषण पहनने के बाद, परंतु जब कृष्ण आभूषण ग्रहण करते हैं तो आभूषण ज्यादा सुंदर हो जाते हैं कृष्ण के सानिध्य में। तो वैसे देखा जाए तो कृष्ण को इन आभूषणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि है ही स्वयं कृष्ण इतने सुंदर। परंतु भगवान कृष्ण के वास्तविक जो आभूषण हैं वो हैं उनके अनगिनत भक्त। भगवान अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते हैं। हालांकि भगवान अपनी जगह में पूर्ण हैं, फिर भी अपनी पूर्णता में भक्तों के विरह में वो एक प्रकार की अपूर्णता का अनुभव करते हैं। और जब भक्त साथ में होते हैं तो पूरी तरह से वो संतुष्ट हो जाते हैं। वृंदावन में भी हम देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला कर रहे थे और एक बार श्रीमती राधा रानी वहां से चली गई, तो हालांकि इतने सारे गोपियां वहां थे श्री कृष्ण के साथ, फिर भी श्री कृष्ण पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। भक्तों के साथ में जब रहते हैं भक्त भी बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जब हम नरसिंह देव भगवान का नाम लेते हैं तो सबसे पहले किसका नाम स्मरण आता है? प्रहलाद महाराज। तो अभी हम प्रहलाद महाराज के चरित्र और उनके उपदेशों की चर्चा करेंगे। आज जितना हुआ उतना करेंगे, अगर चर्चा पूरा नहीं हो पाया तो आने वाले दिनों में और आगे बात को बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से भगवान के लीलाओं का अंत नहीं होता, भगवान के गुणों का अंत नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से भगवान के भक्तों के भी गुण अनंत होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। और जो लाभ हमें मिलता है भगवान की कथा सुनने में, उतना ही लाभ हमें मिलता है भगवान के भक्तों की कथा सुनने में, विशेष करके ऐसे भक्त जैसे प्रहलाद महाराज। श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद में ये वर्णन आता है कि सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, जबकि परीक्षित महाराज ने सुना था सुखदेव महाराज से कि कैसे भगवान विष्णु ने दानवों की हत्या कर दी और देवताओं की ओर से युद्ध किया, और परीक्षित महाराज को ऐसे लगा कि शायद भगवान पक्षपात कर रहे हैं। यह परीक्षित महाराज के मन में ऐसे द्वंद्व उत्पन्न तो नहीं हुआ, परंतु हम सबके लिए वो पूछ रहे हैं ये प्रश्न। जब ये देखा जाता है कि भगवान कृष्ण हमेशा देवताओं का साथ देते हैं और दानव, असुर, दैत्य आदि इनका वध करवाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों के विरुद्ध कार्य करते हैं। परंतु वैसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो न केवल देवताओं के हृदय में निवास करते हैं, वो असुरों के, दैत्यों के, दानवों के हृदय में भी निवास करते हैं। दैत्य दानव एक ओर और सुर या भक्त दूसरी ओर, सबके पिता और शुभचिंतक श्री कृष्ण हैं। तो ऐसे क्यों भला श्री कृष्ण करते हैं कि वो केवल देवताओं का पक्ष लेते हैं, जबकि वो दैत्यों के, असुरों के हृदय में भी विराजमान हैं? तो ये प्रश्न परीक्षित महाराज के हृदय में उत्पन्न हुआ और उन्होंने सुखदेव महाराज से ये प्रश्न किया। तो सुखदेव महाराज ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि वैसे ये जो द्वंद्व है पक्षपात की, कि कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा शत्रु है, ये तो तीन गुणों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। केवल वो व्यक्ति ऐसे विचार करते हैं जो कि तीन गुणों के प्रभाव में है, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो व्यक्ति इन तीन गुणों से मुक्त होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं। जब मुक्त जीव भला इस वृत्ति से, इस भावना से मुक्त होता है, इसके परे हो जाता है, तो भगवान कैसे पक्षपात कर सकते हैं, भगवान कैसे भेदभाव कर सकते हैं? ये भगवान का पक्षपात नहीं है, भगवान भेदभाव नहीं करते। केवल काल के प्रभाव से हर एक को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, और जब अमुक प्रकार का एक गुण जो है प्रधान हो जाता है, तो उस गुण के से पोषण प्राप्त करने वाले प्राणी वो विजय प्राप्त करते हैं। ये तीन गुण हैं जगत में, भगवद गीता में हमें यह ज्ञान मिलता है, और तीनों गुणों की स्पर्धा होती है परस्पर। कभी कभी सत्वगुण का प्राधान्य होता है, तो कभी रजोगुण का, तो कभी तमोगुण का, कभी सत्व और रजो का, तो कभी तमो और रजो का। इस प्रकार से अलग अलग गुणों का प्राधान्य अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थानों में होता है। तो जब सत्वगुण प्रधान हो जाता है तो देवतागण विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि देवगण जो हैं वो सत्वगुण के वश में हैं, वो सत्वगुणी होते हैं। और कभी जब रजोगुण प्रमुख हो जाता है, उस समय असुरगण जो हैं वो जीत प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि असुर जो हैं वो रजोतमो में होते हैं। जब विशेष करके तमोगुण का प्राधान्य हो जाता है, तो उस समय राक्षस गण जो हैं वो शक्तिशाली हो जाते हैं, जीत उनकी होती है। तो सुखदेव गोस्वामी ने समझाया कि इसमें भगवान का कोई लेन देन नहीं है, ये तो तीन गुणों का खेल है, भगवान के प्रकृति के तीन गुणों का ये खेल है, कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे। यहां जगत में भी हम देखते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है जगत में। कोई अखबार खोल के देखिए क्या चल रहे हैं, किसी को पता नहीं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना खून खराबा है, झगड़े हैं, ये है, वो है, क्यों हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है जगत में, किसी को नहीं पता। क्योंकि ये तीन गुणों के जो परस्पर कार्य होते हैं वो सबको भ्रमित कर देते हैं, और इसलिए कभी किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है, आज किसकी हार तो उसकी कल जीत, ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है, उतार चढ़ाव होते रहता है, और किसी को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। और इसी प्रकार से भ्रमित अवस्था में भी अपना प्राण त्यागते हैं, संसार के बारे में कुछ वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं करते, क्योंकि भगवान के साथ उनका संबंध नहीं है। और इस प्रकार से लोग अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवाते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति ये एकमात्र उद्देश्य है। साथ साथ सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अगर भगवान ने देवताओं का साथ दिया भी है, तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि देवतागण भगवान की सहायता को चाहते हैं, वो भगवान के भक्त हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिस प्रकार से माता पिता अपने सब बच्चों को प्रेम करते हैं, अगर उनके 3-4 बच्चे हैं तो सबको प्रेम करते हैं, लेकिन जो बच्चा सबसे ज्यादा उनके ऊपर निर्भर है, जो स्वतंत्र नहीं है, उसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि वो बच्चा उनके ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर है। ठीक उसी प्रकार से भक्त जो होते हैं वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं, अपने स्वतंत्र इच्छा को त्यागते हैं। ये भक्त की पहचान है। कभी कभी ऐसे बताया जाता है, अरे भक्त लोग आपने कितने सब त्याग दिया, आपने ये त्याग दिया, चाय त्याग दिया, कॉफी त्याग दिया, आपने सिनेमा त्याग दिया, टीवी त्याग दिया, ये वो बहुत सी चीजें लोग कहते हैं, लेकिन भक्तों का वास्तव में सबसे बड़ा त्याग कौन सा है बताइए। नहीं, भक्तों के लिए भक्तों का सबसे बड़ा त्याग क्या है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को त्याग दिया है भगवान के और भगवान के भक्तों के चरणों में। जो भगवान और भगवान के भक्त चाहते हैं भक्त वैसा ही करते हैं, भले उनका मन कुछ कहे, भले उनकी बुद्धि कुछ कहे, परंतु भगवान के भक्तों के लिए ये स्वतंत्र भावना नहीं होती, ये नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा त्याग है। और भक्त पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए भगवान विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि वो शरण में आते हैं तो भगवान वो शरण देते हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव महाराज ने पूरा उत्तर दिया, और उत्तर देते देते उन्होंने एक दृष्टांत दिया, एक उपमा। बहुत साल पहले, इतने ज्यादा नहीं, थोड़े साल पहले, बल्कि उस जमाने के हिसाब से राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा था कि शिशुपाल का जब वध हुआ तो उस समय शिशुपाल के शरीर से उसकी आत्मा निकल आई और श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में प्रवेश कर गई। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि शिशुपाल तो बचपन से ही बड़ा द्वेषी व्यक्ति था, जब से वो छोटा बच्चा था, जब से कि वो तोतली बोली में भी नहीं बोलता था, तब से वो कृष्ण को गालियां देता था। कृष्ण के प्रति जो द्वेष था उसके मन में इतना तीव्र था कि बचपन से ही वो भगवान कृष्ण को बुरे शब्द बोलता था, और बड़े होकर भी उसकी वृत्ति ऐसे ही बढ़ती रही, कम नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान में शरीर के दिव्य शरीर में लीन होने का, अर्थात मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिल गया, और उधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी योगी इत्यादि जो साधक होते हैं वो इतने साल परिश्रम करते हैं, कई बार जन्मों तक परिश्रम करते हैं, और फिर भी उनको मुक्ति नहीं मिलती, तो ये कैसे है। तो फिर सुखदेव महाराज ने इतिहास बताया इसका कि क्या कारण है, ये कैसे हुआ, और बताया कि वास्तव में भगवान का प्रेम ऐसे होता है, जब भगवान किसी असुर का वध करते हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो देवताओं के प्रति के पक्ष में कार्य कर रहे हैं और वो असुरों से द्वेष करते हैं, नहीं, बल्कि जब असुरों का वो वध करते हैं तो असुरों का उद्धार करते हैं, असुरों को भी संसार से मुक्त कर देते हैं। यह है भगवान का प्रेम। जो असुर भगवान से घृणा करता है, द्वेष करता है, उसका भी भला करते हैं भगवान। यह है भगवान के दिव्य गुण। और इस दौरान फिर उन्होंने इतिहास बताया कि शिशुपाल वास्तव में कौन थे। उन्होंने कहा कि जय और विजय ये दो द्वारपाल थे वैकुंठ के, और चतुष कुमार जब वहां पहुंचे थे वैकुंठ के द्वार में तो उनके बीच में थोड़ा वाद हुआ, और चतुष कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया कि उनको 3 जन्म भौतिक जगत में लेने पड़ेंगे। पहला जन्म उनका हुआ हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र का। और फिर वो कहने लगे कि हिरण्याक्ष जो है उनके उनका वध हुआ, वराहदेव भगवान ने जबकि पृथ्वी माता को गर्भोदक सागर से उठाने का प्रयास किया और हिरण्याक्ष ने भगवान को रोका, तो दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उधर हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया, बहुत द्वेष हुई भगवान से, और उसने सोचा कि मैं अभी बदला लूंगा और मेरे शत्रु विष्णु को मैं खत्म कर दूंगा। हालांकि भगवान तो कोई को कोई खत्म नहीं कर सकता, खत्म करने की इच्छा रखने वाला आदमी खुद खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान खत्म नहीं होते। भगवान तो रहते हैं, अनादि काल से रहे हैं और अनंत काल तक रहेंगे, उनका कभी अंत नहीं होगा। केवल जो भगवान की ओर कोई अपशब्द बोलते हैं या कोई गलत कार्य करते हैं, वो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान के ऊपर कोई कलंक नहीं पड़ता, बल्कि जो भगवान के खिलाफ कार्य करता है उसका ही नुकसान होता है। ठीक उस प्रकार से जैसे एक व्यक्ति आसमान में ऊपर होने वाले सूरज की ओर देखता है और सूरज से घृणा करते हुए थूकता है ऊपर आसमान में, सूरज को कोई फर्क पड़ता है? उल्टा क्या होता है, उसके मुंह के ऊपर वो तुम गिर जाती है। तो सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, लाखों लोग भी ऊपर मुंह करके बोले कुछ ऐसे थूके सूरज की ओर, सूरज अपने स्थान में स्थित है, सूरज की रोशनी सूरज की उष्णता में कोई कमी नहीं होती। केवल हम लोग जो यहां से ऐसे करने का प्रयास कर रहे हैं, दुष्परिणाम हमारे ऊपर होता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान के खिलाफ जो कार्य करते हैं उनका ही नुकसान होता है, परंतु भगवान इतने कृपालु हैं कि उनका वध करते करते उनका उद्धार भी कर देते हैं। तो वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया कि इसने ऐसे किया है, और उन्होंने सोचा कि मैं बहुत तपस्या करूंगा, तपस्या करने के बाद मैं ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा कि मैं बाद में विष्णु की हत्या कर दूंगा, सारे विश्व के ऊपर मैं प्रभुत्व जमा दूंगा। तो इस प्रकार की जो तपस्या होती है वो तमोगुणी होती है। तपस्या इसलिए नहीं करना चाहिए हमें, श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव महाराज कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का येनम सत्वम शुद्ध ये यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। वो कहते हैं कि हमें दिव्य तपस्या करनी चाहिए, वो तपस्या जिससे कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, ऐसी तपस्या नहीं जो कि केवल हम प्रपंच के अंदर इस भौतिक जगत के भीतर प्रगति करने के से हमें लाभ मिले, ऐसा नहीं है। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत ही ऐसी तपस्या की, और उसके बाद ब्रह्मा जी उनके सामने आए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने पूछा था, बहुत सारी चीजें पूछी, शायद अगर हिरण्यकश्यप राजा नहीं हुए होते तो वकील हुए होते जरूर, क्योंकि ऐसे सब घुमा फिरा के इधर से उधर से ये वो कर करके ताकि कोई पॉइंट बचे नहीं, किसी को हमें रात में नहीं मारना चाहिए, दिन में नहीं मारना चाहिए, अंदर नहीं बाहर नहीं ऊपर नहीं नीचे नहीं, और हथियार से नहीं हाथ से नहीं, कोई जलचर प्राणी नहीं पक्षी नहीं कोई पशु नहीं जमीन के ऊपर चलने वाला नहीं, कोई यक्ष नहीं राक्षस नहीं देव नहीं। क्योंकि अगर सीधा सीधा वो कह देता कि मुझे अमर होना है, तो ब्रह्मा जी कहते भाई मैं भी अमर नहीं हूं, तो मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए उसने सोचा कि कोई इधर घुमा फिरा के कोई रास्ता निकाला जाए, तो इधर से भी कुछ करे, लेकिन भगवान को कौन धोखा दे सकता है। तो भगवान के सामने कोई ऐसा करे तो भले ब्रह्मा जी तो भगवान नहीं है, उन्होंने कह दिया ठीक है, ऐसे वरदान तो आज तक मैंने किसी को दिए नहीं है, परंतु तुम्हारी तपस्या वगैरह ऐसी है कि मैं अभी दे रहा हूं, तो चलो ले लो। उधर जो युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में संवाद चल रहा था, जब हिरण्यकश्यप की बात आई तो नारद मुनि ने प्रहलाद के बारे में बताया कि हिरण्यकश्यप ने बहुत तपस्या की, तपस्या करने के बाद इतना बलवान हो गया, सारे विश्व भर में उसने बहुत उत्पात कर दिया, सबके नाक में दम बन गए, स्वर्ग लोक में सारे ऋषि मुनि जितने भी थे बहुत कष्ट देने लगा वो सबको। तो उधर युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से कहने लगे कि आपने कहा कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच में थोड़ा तनाव हुआ, और हालांकि प्रहलाद महान भक्त थे, फिर भी हिरण्यकश्यप ने उनके खिलाफ बहुत कार्य किए, ऐसा क्यों, क्या कारण है? तब शुकदेव महाराज, तब नारद मुनि ने जाके आगे सारे इतिहास बताया। और जब हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, तपस्या के बल पर बहुत शक्तिशाली हुए, तो फिर इतना उत्पात मचाया कि सारे देवी देवतागण भी उनके वश में आ गए। ऐसा शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि केवल शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु को छोड़कर जितने भी देवी देवता थे या जितने भी ब्रह्मांड में रहने वाले थे, वो सब हिरण्यकश्यप के वश में आ गए थे। इन तीनों को छोड़कर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि हिरण्यकश्यप भी राजा वेन के बराबर था। वेन राजा का नाम तो आपने सुना होगा। वेन राजा बड़ा दुष्ट राजा था, और उसने ऐसे किया था कि जब वो राजा बना तो उसने सारे यज्ञ बंद कर दिए, क्योंकि यज्ञ तो भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए होते हैं। यज्ञों वही विष्णु हो, यज्ञ मतलब विष्णु। तो राजा वेन ने कहा, अरे ये विष्णु विष्णु को छोड़ो, आपको पता नहीं कि राजा ही भगवान है? राजा के दिव्य शरीर में ही सारे देवता निवास करते हैं, और आप सबके लिए राजा ही देव है, भगवान है। इसलिए यज्ञ करना छोड़ो, सारे यज्ञों का फल मुझे अर्पण करो। तो ब्राह्मणों ने जब ऐसे सुना तो उनको बड़ा गुस्सा आया, और उन्होंने हत्या कर दी, अपने हुंकार मात्र से राजा वेन को मार दिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हिरण्यकश्यप राजा भी राजा वेन के समय समान थे, परंतु राजा वेन से और भयंकर। कम से कम राजा वेन जो है वो भृगु आदि ऋषियों से डरते थे, क्योंकि इनकी तपस्या का बल इतना था कि कहीं ऋषि कुछ मिल कुछ करे, उनको श्राप दे दे कुछ करे, इसलिए वो डर रहे थे। परंतु हिरण्यकश्यप ने ऐसी तपस्या कर दी थी जिससे उनको इतना बल प्राप्त हुआ था कि वो भृगु ऋषि को भी और अन्य ऋषियों को भी वश में कर पाए। और ऐसा शुकदेव गोस्वामी यह वर्णन करते हैं भागवत में कि हिरण्यकश्यप के डर से हर समय पेड़ों में फूल हुआ करता, फल हुआ करते थे, पृथ्वी माता जो है भरपूर अनाज प्रदान करती थी, बिना कोई कृषि किए हुए, बिना कोई हल चलाए हुए, दूध भरपूर खूब दूध देती थी, प्रकृति या निसर्ग में सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, किसी को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं थी। देवलोक में बेरोजगारी फैल गई, किसी को कोई काम ही नहीं था, और सभी लोग जो हैं वो बैठे रहे, क्योंकि अकेले ही हिरण्यकश्यप सब कार्य करने लगे, सूर्यदेव का कार्य, चंद्रदेव का कार्य, इंद्रदेव का कार्य, बल्कि इंद्र के दरबार में जाके वो रहने लगे स्वर्ग लोक में, उसी को अपना निवास स्थान बनाया, और इस प्रकार से ऊपर नीचे सब जगह अत्याचार उनका चलता रहा। और जब देव देवताओं से ये सहन नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा क्या करें, किनके पास जाते हैं देवतागण जब कष्ट में रहते हैं? तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था ना। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी सोचा, हाँ वरदान तो मैंने दिया था लेकिन अब क्या करूं, अब मामला मेरे हाथ से भी बाहर चले गया। तो ये अंतर है ब्रह्मा जी में और भगवान में। पहली बात तो भगवान ऐसे कोई वरदान देते नहीं है। ब्रह्मा जी कभी कभी दे भी देते हैं, शिव जी भी कभी कभी दे देते हैं, परंतु भगवान ऐसे कभी कोई वरदान नहीं देते जिससे कि उपासक का अहित हो जाए। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी कभी कभी किसी के तपस्या से भी प्रसन्न होकर दे देते हैं। बाद में जब भगवान नरसिंह देव के रूप में आए तो उन्होंने ब्रह्मा को कहा, देखो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी आपने ऐसे ऐसे वरदान दे दिए ना, इसलिए देखो इतना सब कांड हुआ है, प्रहलाद युग इतना अत्याचार हुआ सारे ब्रह्मांड में, तो आगे थोड़ा आइंदा थोड़ा सावधान रहिए, वरदान देने के पहले थोड़ा सोच के वरदान दीजिए। तो इस प्रकार से उत्पात करते करते जब देवताओं को सहन शक्ति नहीं रही और उसको सहन करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उनको लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनको सांत्वना दी और सांत्वना देते हुए उनको कहा कि कोई चिंता नहीं कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सुखदेव महाराज ने ये वर्णन जो किया है वो सीधे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के संवाद को दोहराया है। तो युधिष्ठिर महाराज का ये सवाल था कि दोनों के बीच में जो वैर हुआ, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, इसका कारण क्या है? ये तो बहुत अद्भुत बात है और इस प्रश्न के उत्तर में ये सारा संवाद अभी यहां पे चल रहा है। तो भगवान ने पहले तो देवताओं को सांत्वना दी और कहा कि चिंता नहीं करो, मैं अवश्य अवतीर्ण हो जाऊंगा, और आश्वासन दिया कि जब मैं आऊंगा और जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद के प्रति कोई अत्याचार करेगा, कोई अन्याय करेगा, उस समय शीघ्र ही उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं सुखदेव महाराज क्या कहते हैं। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रह्रादाय यदा दृश्येद धनिष्येपि वरोर्जितम्। वो कहते हैं, प्रहलाद का वर्णन कर रहे हैं, प्रहलाद को कहते हैं कि निर्वैराय, वैर मतलब शत्रु, निर्वैर मतलब जिनके कोई शत्रु नहीं है। तो प्रहलाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई शत्रु नहीं है, अर्थात प्रहलाद किसी को शत्रु नहीं मानते हैं। आगे चल के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपना शत्रु मान लिया, वो हिरण्यकश्यप का दोष है, प्रहलाद का कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रहलाद एक महाभागवत होने के नाते किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। प्रशांताय, वो बिल्कुल शांत थे, प्रकृष्ट रूपेण शांत है, इंद्रियां उनके पूरे वश में थी, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को काबू में नहीं कर सकता है वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप के साथ भी ऐसे ही हुआ, हालांकि हिरण्यकश्यप ने सारे ब्रह्मांड के ऊपर अपना प्रभाव जमा लिया था, फिर भी वो शांत नहीं था, सदैव विचलित रहा करता था। और इसके लिए कारण क्या है? सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया था, इसलिए हालांकि उसने सारे ब्रह्मांड के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया फिर भी वो असंतुष्ट था, फिर भी वो सदा विचलित रहा करता था। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हर एक व्यक्ति बनाना चाहता है, हर एक व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं पूर्ण करने के लिए। कभी कभी हम भगवान के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, भक्ति मार्ग में होते हुए भी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु भगवान के लिए कार्य करते करते हमें जानना चाहिए कि जितना एक क्षण परिश्रम शुद्ध हृदय से करके लाभ होगा, उतना बहुत लंबे समय से अशुद्ध हृदय से करने से नहीं हो पाएगा। शुद्ध हृदय जब होगा, जब हृदय में भगवान की भक्ति होगी, इंद्रियों के मांगों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, उस समय जो शुद्धता उसके हृदय में आएगी और ऐसे अवस्था में भगवान के लिए कुछ कार्य करे तो वो कार्य सफल हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो हिरण्यकश्यप ने भौतिक दृष्टि से बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था, सफलता के सर्वोच्च शिखर पे वो स्थित था, क्योंकि देवतागण भी उनके नीचे थे, फिर भी खुश नहीं था हिरण्यकश्यप। तो हमें भी जानना चाहिए कि जब तक हम हमारे इंद्रियों को वश में नहीं करते भगवान की सेवा करके, तब तक हम शांत नहीं होंगे। प्रहलाद एक आदर्श भक्त थे, इसलिए उनको प्रशांत कहा गया है। पूरी तरह से अपने इंद्रियों को उन्होंने इंद्रियों को दमन कर लिया था। स्वसुताय महात्मने, इसलिए वो महात्मा थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, महान आत्मा। प्रहरादाय यदा द्रुहियेत धनिष्येपि वरोर्जितम्, हालांकि अपि वर ऊर्जितम्, हालांकि ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप को इतने बड़े बड़े वरदान मिले हैं, फिर भी जब वो अपने पुत्र प्रहलाद जो कि बड़े महात्मा हैं उनके प्रति कोई हिंसा करेगा तब जो है वो खत्म हो जाएगा, तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि हालांकि हिरण्यकश्यप को इतने सारे वरदान मिले थे, फिर भी हिरण्यकश्यप का सबसे बड़ा दोष ये था कि उसने प्रहलाद महाराज जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों में बहुत ही भयंकर अपराध किया। तो ऐसे भयंकर वैष्णव अपराध करने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमें अगर अन्य कितने भी वरदान क्यों न मिले हों, हमारे पास अन्य कितने भी शक्तियां क्यों न हो, कितना ऐश्वर्य धन आदि क्यों न हो, कितनी बुद्धि क्यों न हो, वो सब शून्य के बराबर हो जाएगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। जो भक्त होता है वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो अज्ञानी है, मूर्ख है, अगर वो भक्त को अपना शत्रु मान लेता है तो फिर उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। अम्बरीश महाराज भी भगवान के शुद्ध भक्त थे। जब दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा मुनि की सेवा करते करते अम्बरीश महाराज एक साल रुके रहे, अपना उपवास नहीं तोड़ा, केवल उन्होंने आचमन कर लिया जिससे कि उनके पारण भंग न हो जाए, साथ साथ वो मर्यादा व्यतिक्रमण भी न हो जाए दुर्वासा मुनि के प्रति, कि अतिथि के भोजन लेने के पहले वो उपवास तोड़े, ऐसा भी नहीं। तो मंत्रियों का सलाह लेकर अम्बरीश महाराज ने बहुत बुद्धिमानी से ऐसे किया था, लेकिन बिना वजह से दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध आया। दुर्वासा मुनि वैसे बहुत ही शक्तिशाली योगी थे और बहुत असीम शक्ति थी उनके पास, अपनी योग सिद्धि इतनी प्रगाढ़ थी उनकी कि अगर वो चाहते तो अपने श्राप मात्र से कईयों को जला के राख भी कर देते। उनके गुस्से से सभी लोग डरते थे। और वो जब आए अम्बरीश महाराज के पास और उनको पता चला अपनी योग शक्ति के द्वारा कि अम्बरीश महाराज ने आचमन कर लिया है, तो उन्होंने अपने बाल से एक भयंकर राक्षस को उत्पन्न किया और वो राक्षस अम्बरीश महाराज की ओर आक्रमणात्मक दृष्टि से आगे बढ़ा। और उस समय हालांकि अम्बरीश महाराज ने कोई विरोध नहीं किया, परंतु भगवान को सहन नहीं हुआ। भगवान का सुदर्शन चक्र स्वयं ही उनकी उंगली से निकलकर, उनके कर कमलों से छूटकर उस राक्षस के पीछे आया, राक्षस को का वध कर दिया और उसके बाद दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि सब जगह गए, परंतु कहीं भी उनको राहत नहीं मिली। अंततः वो सीधे भगवान विष्णु के चरण कमलों में आए, त्राही त्राही मुझे बचाइए। फिर भी भगवान विष्णु ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। उन्होंने कहा कि हे अम्बरीश, हे दुर्वासा मुनि, आप जान लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, आप अपनी रक्षा चाहते हो, लेकिन मैं आपकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन, पूरी तरह से मैं पराधीन हूं भक्तों के चरणों में। ही अस्वतंत्र इव द्विज, हे द्विज, हे ब्राह्मण, मैं पूरी तरह से अस्वतंत्र हूं। प्रवचन के पहले हम कह रहे थे कि भक्त का सबसे बड़ा त्याग ये होता है कि वो अपनी स्वतंत्रता को त्यागता है। तो भगवान जब देखते हैं कि इस जीव ने, इस व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता को त्यागा है, और ये चीज तो बहुत मुश्किल है त्याग करने के लिए जगत में, तो भगवान इतने आभारी हो जाते हैं उस भक्त के प्रति, वो भी अपनी स्वतंत्रता को त्याग देते हैं, वो भी अपने भक्तों के शरण में आ जाते हैं। ये है भगवान के दिव्य गुण। कौन ऐसे कर सकता है इस दुनिया में? कौन ऐसे मालिक है, कौन ऐसे प्रभु है जो अपने सेवक के प्रति पूरी तरह से शरणागत हो जाता है? है कोई दफ्तर में ऐसे कोई डायरेक्टर जो ऐसे अपने कर्मचारियों के शरण में चले जाता है? नहीं। लेकिन भगवान ऐसे हैं, मालिक ऐसे प्रभु हैं, जो देखते हैं कि जब भक्त उनके शरण में आए हैं स्वतंत्रता को त्याग कर, तो भगवान भी अपने भक्तों के शरण में जाते हैं, स्वतंत्रता को पूरी तरह से त्याग देते हैं। और फिर वो कहते हैं साधुवीर ग्रस्त हृदयो, कि साधु, साधुओं के हृदय में, मेरा हृदय जो है वो साधु से ग्रस्त है, मतलब पूरी तरह से उनके वश में है, मेरे हृदय में वो समा गए हैं। साधुओं के बिना मैं कुछ जानता नहीं हूं, और मेरे भक्तों की बात तो दूर है, मेरे भक्तों के जो भक्त रहते हैं वो भी मेरे लिए बहुत प्रिय होते हैं। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है, भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम नहीं करता है, परंतु मेरे भक्तों से प्रेम करता है और मेरे भक्तों की सेवा करता है, तो वो भी मेरे लिए बहुत प्रिय हो जाता है। कभी कभी ऐसे देखा जाता है हमारे संस्था में भी, इस्कॉन में भी, कई लोग भक्त बन जाते हैं और अच्छे अच्छे भक्त बन जाते हैं, लेकिन उनके मन में एक दुख रहता है कि हमारे परिवार के सदस्य कोई भक्त नहीं बने, वो हमारे माता पिता हो, भाई बहन हो, बच्चे हो या कोई हो, वो भक्त नहीं बन रहे हैं, वो जप नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, ऐसे सोचना भी ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करना, उनको प्रचार करने का प्रयास करना आदि उचित है, परंतु अंततः ये हमारे हाथ में नहीं है कि वो व्यक्ति भक्त बने या नहीं बने। परंतु अगर हमने हमारी भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया है, तो फिर हमारे, हमसे संबंधित जितने भी लोग हैं, अवश्य भगवान उनके ऊपर भी प्रसन्न होंगे। भक्तैर भक्त जन प्रिय, तो भगवान ने सीधा सीधा यहां पे कह दिया। और फिर वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को वश में करती है सेवा करके, ऐसे नहीं कि डांट के, सेवा करके, सेवा करके जब वो वश में करती है, तो पति पूरी तरह से उसके वश में आ जाता है। हालांकि पति को लगता है कि मैं नियंत्रण करने वाला हूं, मेरे कहने पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पतिव्रता स्त्री होती है इतनी बुद्धिमान होती है कि वो वश में रखती है अपने पति को, लेकिन पति को पता नहीं चलता है कि मैं पत्नी के वश में हूं। पति यही भ्रम में रहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन फिर भी पत्नी सेवा भाव से पति को वश में रखती है। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार ऐसे सेवा से एक पतिव्रता स्त्री अपने पत्नी को वश अपने पति को वश में रखती है, ठीक उसी प्रकार से अपने प्रेममयी सेवा से भक्त जो हैं वो भगवान को वश में रखते हैं। और भक्तों को कुछ भी नहीं चाहिए, उनको मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, भगवान के धाम के ऐश्वर्य नहीं चाहिए। और भगवान कहते हैं मेरे भक्तों की बात तो दूर है, मेरे धाम के ऐश्वर्य को मैं भी पसंद नहीं करता अगर मेरे भक्त साथ में न हो तो। मेरा सारा वैकुंठ जगत मुझे खाली खाली लगता है मेरे भक्तों के बिना। जिस प्रकार से अगर कोई बहुत ही अमीर आदमी हो, उसके पास कई बड़े बड़े मकान हैं, महल हैं जो सोना चांदी के बने हुए हैं, अनमोल रत्नों के बने हुए हैं, लेकिन घर में कोई नहीं, अकेला रहता है, कोई मित्र नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार के सदस्य नहीं, किसी को किसी के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने का मौका नहीं, तो वो सोचेगा क्या फायदा है ये सब, इतना ये सान चांदी सोना, ये रत्न, इस हीरे, क्या फायदा है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि से कि मेरे भक्तों के बिना सारा वैकुंठ जगत मुझे खाली लगता है, मुझसे मुझे कोई आनंद नहीं आता ऐसे वैकुंठ जगत में। बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान और भक्त के बीच में किस प्रकार का मधुर संबंध है देखिए। और फिर आगे भगवान कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मद अन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। वो कहते हैं कि साधु मेरे हृदय में है और मैं साधुओं के हृदय में हूं, साथ साथ मेरे सिवाय मेरे भक्त किसी दूसरी चीज को जानते नहीं है और मेरे भक्त के सिवाय मैं किसी दूसरी चीज को जानता नहीं हूं। ये बहुत ऊंची बात है, ये भगवान कह रहे हैं, भगवान झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान यूं ही कुछ बोल नहीं डालते हैं, भगवान जब भी कुछ बोलते हैं तो उस वो बहुत गहरी बात बोलते हैं, मतलब से भारी होता है वो बात। हम लोग दुनिया में कभी कभी ऐसे वैसे कुछ बोल भी देते हैं, है ना, कभी बातों बातों में सामने किसी व्यक्ति को बोलते हैं आप बहुत महान हैं, लेकिन मन में हमारे विचार नहीं नहीं महान नहीं, आप तो उल्टा मन में विचार होता है हमारा, सामने कुछ बोल भी देते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, जब कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे सत्य, वो सत्य पे आधारित होता है, भगवान सत्य मूर्ति है, सत्य की मूर्ति है वो। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मेरे सिवाय भक्तों को कुछ नहीं पता और भक्तों के सिवाय मुझे कुछ नहीं पता। इस प्रकार से जब प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्त को कष्ट देता है, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान के हृदय में स्थित होता है, तो वो भगवान के हृदय को दुख पहुंचाने के बराबर है। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार से एक बच्चे को कष्ट देने से बच्चे के पालकों को, माता पिता को कष्ट होता है, अगर बच्चे को कोई बहुत बीमारी हो जिसमें बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही हो, तो माता पिता को बच्चे से ज्यादा तकलीफ होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान के भक्तों को कोई कष्ट होता है तो भगवान को भी बहुत दुख होता है। हालांकि भगवान आत्मा राम है, संतुष्ट है, फिर भी प्रेम का पथ इस प्रकार से है कि अपने भक्तों के दुख को वो सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद के प्रति हिंसा करना शुरू करेगा तब उसका अंत आ जाएगा। हालांकि हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या की है और तपस्या के बल पर इतने सारे वरदान प्राप्त कर लिए हैं जिससे कि वो प्राय सारे ब्रह्मांड में चौथे स्थान में था, विष्णु शिव जी और ब्रह्मा जी के बाद में चौथा नंबर हिरण्यकश्यप का था, सारे ब्रह्मांड में सोच लीजिए। तो हिरण्यकश्यप कितना बड़ा असुर था सोचिए, यहां तो छोटे छोटे असुर सब है, सब इधर उधर आगे बढ़ते हैं कि सबके ऊपर अधिकार जमाने के लिए, परंतु हिरण्यकश्यप जैसे कोई असुर बन सकता है? सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं भले कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो हिरण्यकश्यप, लेकिन जब वो मेरे भक्त के प्रति आक्रमण करेगा, अन्याय करेगा, तब उसकी शक्ति कहीं की भी नहीं रहेगी, सब शून्य के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, ये वैष्णव अपराध जो होता है, विशेष करके जो प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्तों के प्रति किया जाता है, इसका कितना परिणाम, कितना भयंकर परिणाम होता है। तो हमारे कितने भी पुण्य कार्य क्यों ना हो, हमारी शक्ति, हमारा कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमें भक्तों के प्रति, भक्तों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर आगे नारद मुनि बताते हैं कि इस प्रकार से जब भगवान ने सांत्वना दी सारे देवताओं को, तो वो संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपना सम्मान प्रकट किया, दंडवत किया भगवान को, और वहां से निकल गए शांति से। अभी उनके मन में ये निश्चित ज्ञान था कि अब हिरण्यकश्यप खत्म हो गया, केवल समय की बात है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, जब देवतागण स्वयं भगवान के पास जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो मनुष्यों को देवताओं की उपासना करने की क्या आवश्यकता है? जब देवता खुद भगवान के पास जाते हैं, तो हमें भी जाना चाहिए भगवान के पास। हम ये नहीं देखते कि भगवान देवताओं के पास जाते हैं, नहीं, देवता भगवान के पास जाते हैं, तो हमें देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो सीधा भगवान के पास ही जाना चाहिए। चाहे हमारे मन में भौतिक कामनाएं भी क्यों ना हो, नहीं होनी चाहिए, परंतु हो भी, तो देवताओं के पास जाने के बजाय हमें भगवान के पास जाना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि चाहे किसी के मन में तरह तरह की कामनाएं हो, भौतिक कामनाएं, किसी के मन में कोई भी कामना न हो, किसी के मन में मोक्ष की कामना हो, हर एक प्रकार के व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की तीव्र भक्ति करनी चाहिए। और ऐसा करने से उसको अपने अपने इच्छित फल जो है वो मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति भौतिक कामनाएं लेकर भगवान के पास जाता है, भगवान बड़े बुद्धिमानी से उसके हृदय में ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि ये भौतिक कामना ही नष्ट हो जाती है ऐसे भक्त के हृदय में। और फिर इन भौतिक कामनाओं की जगह में शुद्ध भगवत भावना का विकास होने लगता है। तो ये है भगवान की कृपा। तो ऐसे उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि जब देवतागण जाके भगवान का शरण लेते हैं, तो हमें देवताओं की शरण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे भगवान के पास हमें जाना चाहिए। फिर आगे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, तस्य दैत्यपतेः पुत्राः चत्वारः परमाद्भुताः प्ररादो भून्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः। तस्य, उनका मतलब हिरण्यकश्यप का, दैत्यपति ही मतलब दैत्यों के वो स्वामी थे, असुरों के राजा, सर्वश्रेष्ठ सम्राट। पुत्राः चत्वारः, उनके चार पुत्र थे, और चारों पुत्र जो हैं परम अद्भुत, अद्भुत गुणों से सुशोभित थे। लेकिन इन चारों पुत्रों में से प्रहलाद अभून महांस्तेषाम, उनमें से सबसे महान थे प्रहलाद, इन चार भाइयों में से जो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। और क्यों महान कहे जाते हैं? गुण ही, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण थे। तो महानता गुणों से समझा जाता है, न केवल धन से, न सौंदर्य से, न किसी और भौतिक ऐसे लक्षणों से। जिनके पास दिव्य गुण हैं, भगवान के भक्तों के गुण हैं, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। तो नारद मुनि जब कहते हैं गुणेर, तो ऐसे गुण क्यों आए प्रहलाद के अंदर? महत उपासक है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के सबसे महान उपासक या भक्त थे, इसलिए उनके अंदर सारे अच्छे अच्छे गुण आ गए। तो भक्ति करने के कई लाभ होते हैं, उनमें से एक लाभ ये है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, खुद ब खुद उसके अंदर सारे अच्छे अच्छे गुण प्रकट होने लगते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। तो जो व्यक्ति अकिंचन भाव से भगवान के शरण में आता है तो देवताओं के अंदर जितने भी अच्छे गुण सारे उसके अंदर आ जाते हैं। हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथे नासति धावतो बही। और जो हरि के भक्त नहीं है उनके बारे में क्या कहना, क्योंकि वो अपने मन के रथ के ऊपर सवार होकर इधर उधर भटकते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो उनके अंदर भला कैसे कोई अच्छे गुण निर्माण हो सकता है, संभव नहीं है। तो इसलिए प्रहलाद की ये विशेष बात थी। तो ये मूल बात है, अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त है तो ये उसका सबसे बड़ा गुण है। हरिदास ठाकुर भी हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं कि भक्तों के अनेक लक्षण होते हैं, एक है मुख्य लक्षण और दूसरे हैं स्वरूप लक्षण। मुख्य लक्षण है शरणागति, कि जब भक्त भगवान के शरण में जाता है तो ये शरणागति उसका मुख्य लक्षण होता है, और इस शरणागति की वजह से उसके अंदर अनेक लक्षण प्रकट होने लगते हैं जो गौण लक्षण या तटस्थ लक्षण कहलाते हैं। ये है स्वरूप लक्षण या मुख्य लक्षण शरणागति। तो प्रहलाद पूरी तरह से भगवान के चरणों में शरणागत थे, यह उनका स्वरूप लक्षण था, मुख्य लक्षण था, जिसकी वजह से उनके अंदर इतने सारे दिव्य गुण, असंख्य दिव्य गुण हो गए। वैष्णवों के 26 प्रमुख गुण ऐसे बताए जाते हैं, पर उन 26 तो केवल एक उदाहरण है, ऐसे तो अनंत गुण होते हैं। जिस प्रकार से भगवान के अंदर अनंत गुण होते हैं, उनके शुद्ध भक्तों के अंदर भी अनंत गुण होते हैं, हालांकि बहुत ही अणुमात्रा में भगवान की तुलना से, फिर भी ये गुण अवश्य विद्यमान होते हैं भगवान के भक्तों में। तो प्रहलाद महाराज के चरित्र में भी ऐसे दिव्य गुण पाए जाते हैं। तो कौन से गुणों की बात कर रहे हैं नारद मुनि, तो आइए सुनते हैं। नारद मुनि कहते हैं, ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमः। ब्रह्मण्य, ऐसी उनकी संस्कृति थी जैसे एक प्रामाणिक ब्राह्मण की होती है, सच्चे ब्राह्मण। हम केवल ऐसे ब्राह्मण की बात नहीं करते हैं जिसने उपवीत धारण किया हुआ है, जिसने जनेऊ पहन लिया है, केवल उपवीत पहनने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता। ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण वो होता है जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण होते हैं। और क्योंकि प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ वैष्णव थे, इसलिए उनके अंदर सारे ब्राह्मणों के गुण तो स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गए, बल्कि एक वैष्णव जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। लेकिन हरेक ब्राह्मण वैष्णव हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन हरेक वैष्णव भले उसका जन्म किसी तथाकथित नीच कुटुंब में क्यों ना हुआ हो, वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भगवान के शरण में जाने से, क्योंकि उसके अंदर ये स्वरूप या मुख्य लक्षण हैं, तो सारे ब्राह्मणों के भी जितने भी अच्छे अच्छे लक्षण है वो सब उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। शील संपन्न है, इसलिए पूरी तरह से उसका चरित्र जो है वो बिल्कुल अच्छा था, चरित्रवान थे प्रहलाद। सत्य संधो मतलब परम सत्य को जानने में वो बिल्कुल सुदृढ़ थे। एक गुण ये होता है कि भगवत पथ में चलने के लिए एक निष्ठावान वृत्ति होना। ऐसा नहीं कि बस हम अपने आप को भक्त कहलाएं लेकिन निष्ठावान न हो पथ में, इसमें कोई मतलब नहीं है। जब हम भगवान को जानने के, उनके उनको प्रेम करने के मार्ग में चले हैं, तो उस मार्ग में हमें बहुत श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई रुकावट आ गई बीच में और हमने भक्ति मार्ग को त्याग दे दिया। कोई कठिनाई आई, किसी ने कुछ कह दिया, या घर में कोई कठिनाई हुई, व्यवसाय में कोई परेशानी हुई, तो भगवान की भक्ति को छोड़ दिया, नहीं। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने कठिनाइयां आई, हम सब ने सुना है इनके बारे में। प्रहलाद महाराज को जो कष्ट हुए उनके सामने हमारे कष्ट क्या हैं? कुछ भी नहीं। फिर भी प्रहलाद महाराज ने कभी एक क्षण के लिए भी भगवान को भूला नहीं। इसलिए सत्य संधो जितेंद्रिय है, अपने इंद्रियों को प्रहलाद महाराज ने जीत लिया था। आत्मवत सर्वभूतानाम, जिस प्रकार से भगवान परमात्मा के रूप में सारे प्राणियों के प्रति करुणा की भावना रखते हैं, उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज भी ऐसी ही दृष्टि सब प्राणियों के प्रति रखते थे। एक प्रिय सुहृत तमः, सुहृत मतलब हमारे शुभ चिंतक। तो जैसे भगवान हरेक प्राणी के शुभ चिंतक होते हैं, उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त जैसे प्रहलाद महाराज भी शुभ चिंतक होते हैं। कोई साधारण व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हितैषी नहीं हो सकता, वो चाहे तो भी हितैषी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर वो ज्ञान नहीं है, वो शुद्धता नहीं है। पहले तो वो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि दूसरे का हित किस में है। जब तक हम सत्य को नहीं जानते हैं कि कृष्ण भक्ति करना ही हित है हमारा, तब तक हम दूसरे का हित कैसे चाहेंगे। जैसे हमने सुना कि सरकार यहाँ कर्नाटक राज्य में कई साल पहले चर्चा कर रही थी कि अभी जो दोपहर में मुफ्त भोजन दिया जाता है दोपहर में स्कूल के बच्चों को सरकार की ओर से, तो बच्चों का हित चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि उनकी उनकी जो तबीयत है वो सुधर जाए, वो हृष्ट पुष्ट हो जाए। अभी उनको क्या मिल रहा है? केवल चावल सांबार है, कोई सब्जी मिल रही है। हम चाहते हैं कि उनको अच्छा प्रोटीन मिले, इसलिए उनके भोजन में हम अंडे देना चाहते हैं। तो ये सरकार ने नियम बना दिया कि सारे बच्चों को स्कूलों में जबरदस्ती अंडे खिलाए जाएं। क्यों? सरकार क्या सोच रही है? हम हितैषी हैं बच्चों के, हम हित चाहते हैं बच्चों का, वो हृष्ट पुष्ट हो जाए, उनको अच्छा प्रोटीन मिलना चाहिए। तो ऐसे हितैषी होने से क्या फायदा? हितैषी नहीं, अहितैषी हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है किस चीज में हित है किस चीज में हित नहीं है। तो सच्चे हितैषी तो केवल भगवान और प्रहलाद महाराज जैसे उनके भक्त होते हैं, जो अच्छी भावना रखते हैं और वो भावना ज्ञान युक्त होती है, इसलिए वो वास्तविक हितैषी होते हैं। तो सारे हितैषियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रहलाद महाराज थे। और आगे नारद मुनि कहते हैं, दासवत्सन्न तार्यांघ्रि पितृवद्दीन वत्सलः भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुष्व ईश्वर भावनः विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः। तो अलग अलग प्रकार के लोगों से उन्होंने कैसे व्यवहार किया, यह नारद मुनि बताते हैं। तो भक्त का व्यवहार जो होता है दुनिया में बड़ा अनुसरणीय होता है। अगर आपको प्रैक्टिकल दृष्टि से ये जानना है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए दुनिया में, तो हमें आदर्श भक्तों को देखना चाहिए। उनके व्यवहार से हम जान सकते हैं कि हमारा व्यवहार आपस में कैसे होना चाहिए लोगों के साथ। तो प्रहलाद महाराज ने महान व्यक्तियों के साथ, आर्य, आर्य मतलब वो व्यक्ति जो सज्जन है, जो सभ्य है। सज्जन और सभ्य व्यक्ति मतलब जो विशेष करके भगवान के भक्त हैं। अंग्री, अंग्री मतलब चरणों में। आर्य अंग्री, सन्नता, सन्नता मतलब आज्ञाकारी। दासवत मतलब एक दास के समान। तो जो माननीय सज्जन भद्र व्यक्ति थे, जो भगवान के भक्त थे, या उनसे जो वरिष्ठ व्यक्ति थे, उनके प्रति वो एक आज्ञाकारी सेवक के रूप में पेश आते थे, दासवत हो जाते थे, सम्मान से उनसे व्यवहार करते थे। ये वैदिक संस्कृति जो है ये सम्मान पर आधारित है। हर एक व्यक्ति अपने दूसरों को सम्मान देता है। और आगे कहते हैं नारद मुनि, पितृवत दीनवत सलह, जो व्यक्ति बिल्कुल गरीब हैं, दीन हैं, उनके प्रति वो पिता के समान थे। जिस प्रकार से पिता देखरेख करता है अपने बच्चों की, भरण पोषण करता है। ठीक उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज दीनहीनों के प्रति ऐसे करुणा की भावना रखते थे, पितृवत एक पिता की तरह, भ्रातृवत सदृशे स्निग्धो। सदृश्य मतलब जो उनके बराबर के थे, उनके प्रति वो भाई के समान थे, और स्निग्ध, स्निग्ध मतलब बड़ा प्रेम का व्यवहार उनका रहता था। तो देखिए अलग अलग जो हमसे वरिष्ठ हैं उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो दीन हैं जो हमसे निम्न श्रेणी में हैं उनके प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, और जो हमारे बराबर के हैं उनके साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन से सिखलाया है। साथ साथ विद्या, अर्थ, रूप, जन्म इत्यादि, हालांकि ये सब चीजें प्रहलाद महाराज के पास थीं, फिर भी इनकी वजह से कभी भी मान और स्तंभ, ये घमंड अहंकार कभी प्रहलाद महाराज को नहीं हुआ। इसलिए नारद मुनि कहते हैं मान स्तंभ विवर्जितः, इनके चरित्र में ऐसे मान घमंड इत्यादि बिल्कुल नहीं पाया जाता था। तो इस प्रकार से यहां पर नारद मुनि प्रहलाद महाराज के दिव्य चरित्र का वर्णन करते हैं, और आगे वो कहते हैं कि हालांकि प्रहलाद महाराज का जन्म एक असुर कुल में हुआ था, फिर भी असुरों के गुण उनमें नहीं आए। रहित असुर सुरः, रहित असुरः असुरः, हालांकि वो असुर हैं फिर भी रहित असुरः, फिर भी असुरों के गुण उनमें नहीं हैं। इसके विपरीत वो तो महान वैष्णव हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वैष्णव होना ये जन्म की बात नहीं है। भले हमारा जन्म किसी तथाकथित नीच कुल में भी क्यों ना हुआ हो, अगर हमें भगवान के भक्तों का संग मिल जाता है और हम उनकी आज्ञा के अनुसार इस भक्ति मार्ग में प्रगति करते हैं, फिर हम भी वैष्णव बन सकते हैं, हम भी भगवान के प्रिय हो सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इस सिद्धांत के लिए। उनका जन्म एक असुर कुल में हुआ था। असुर मतलब वो व्यक्ति जो भगवान के आदेश का पालन नहीं करता है, जो भगवान से द्वेष करता है, जो भगवान के भक्तों को परेशान करता है। परंतु ऐसा जन्म प्राप्त करने के बाद भी प्रहलाद महाराज के अंदर असुरों के गुण नहीं थे, बल्कि महान वैष्णवों के गुण थे उनके अंदर, और कभी भी वैष्णवों से वो द्वेष नहीं करते थे। आप ऐसे कोई उदाहरण बता सकते हैं अन्य महान वैष्णवों के, जिनका जन्म कोई ऊंचे कुल में नहीं हुआ, परंतु किसी नीच योनि में या किसी नीच कुल में हुआ, फिर भी हम सबके लिए सम्माननीय पूजनीय है, बताइए। हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर का जन्म किस प्रकार के कुल में हुआ, एक यवन कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको सम्मान दिया। क्या पदवी दी उनको, नामाचार्य, हरिनाम लेने के वो आचार्य हैं। और कोई उदाहरण, हनुमान जी, हनुमान जी वानर योनि से उत्पन्न हुए, हालांकि उनके पिता देवलोक से हैं, वायुदेव के पुत्र माने जाते हैं, फिर भी माँ तो वानर योनि की है। तो जितने भी वानर सेना थे भगवान रामचंद्र के साथ, उनका जन्म तो ऐसे योनि से हुआ, परंतु वे भी सर्वश्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं। और कौन, हाँ, विभीषण, विभीषण भी रावण के छोटे भाई थे। रावण तो एक राक्षस हो गया था, कुंभकर्ण रावण एक समान थे, परंतु विभीषण भगवान के भक्त हो गए। उसी प्रकार से ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग में भी कोई भी प्रगति कर सकता है। इसमें कोई जाति भेद नहीं है, कोई जन्म भेद नहीं है, कुल भेद नहीं, कुछ नहीं। हर एक व्यक्ति को पूरा पूरा अधिकार होता है गोलोक वृंदावन धाम को पहुंचने का, अगर वो केवल प्रहलाद महाराज के पदचिन्हों में चले, इसी प्रकार से व्यवहार करे जैसे प्रहलाद महाराज ने किया था, और ऐसे ही निष्ठावान होकर भगवान का भक्त भगवान की सेवा करे तो वो भी ऐसे चरम सीमा को प्राप्त कर सकता है। और प्रहलाद महाराज कोई भी ऐसे कर्मकांड आदि के कार्य में रुचि नहीं रखते थे। स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान करना, ये धर्म अर्थ काम, ये कर्मकांड में और अर्थ विकास में और ये इंद्र तृप्ति में कोई रुचि उनको नहीं थी। कोई भी भौतिक कामनाएं उनके मन में नहीं थी, इसलिए उनका चित्त जो है वो बिल्कुल शांत हुआ करता था हर समय। और आगे नारद मुनि बताते हैं कि प्रहलाद महाराज के जो दिव्य गुण हैं वो इतने अद्भुत हैं कि आज भी जितने भी संत हैं, साधु हैं, वैष्णव हैं, वो उनका गुणगान करते रहते हैं आज भी। मतलब यह अब नारद मुनि कह रहे हैं ना, तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से ये कब कह रहे थे? 5000 वर्ष पूर्व। और ये कौन सा युग था? द्वापर का अंत था। और प्रहलाद महाराज कब आए थे? सत्ययुग में। तो कितने लाखों लाखों साल पूर्व की बात नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं। तो लाखों लाखों साल बाद भी जब भी ऐसे वैष्णव प्रहलाद की बात करते हैं तो गुणगान करने लगते हैं। यहां देखा जाता है कि लोग प्रतिष्ठा और यश के पीछे बहुत पड़े रहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा नाम अखबार में आ जाए, मेरा फोटो छपे सब जगह, सभी लोग मुझे जाने, किताबों में मेरे नाम आ जाए, इतिहास की किताबों में भी आ जाए। परंतु कितने सालों तक हमारा नाम रहेगा यहाँ पर? कभी कभी लोग जानते हैं कि मेरा शरीर का नाश होगा, वो सोचते हैं कि मेरे नाम कहीं मैं लिख दूं। अब लेकिन ट्रेन में भी कई लोग अपना नाम लिख देते हैं। अरे किसे देखना है आपका नाम ट्रेन में? कभी शौचालय में भी जाएंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे, टेलीफोन नंबर लिखेंगे, है ना? या कई हमने देखा है कई बार वो पहाड़ में जाते हैं तो पहाड़ के पत्थर में ऊपर हाईवे के ऊपर वो अपना नाम लिख देते हैं। तो वो सोचते हैं कि ऐसे नाम लिखने से मैं अमर हो जाऊंगा, कम से कम मेरा नाम लोग पढ़ते रहेंगे मेरे मरने के बाद भी। तो ऐसे अमृतत्व की अवस्था को प्राप्त करने के लोग ऐसे सब करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर अपने को हमारा नाम अमर बनाना है तो क्या करना चाहिए? भगवत भक्ति करना चाहिए। भगवान का भक्त का जो यश होता है वो सबसे लंबा होता है। अब देखिए पिछले 2-4-5 हजार सालों में जितने भी राजा हुए, अब किसको याद है? कितने हजारों हजारों राजा हुए, आए और गए। इतिहास की किताबों में थोड़ा बहुत बेचारे विद्यार्थियों को जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, ये राजा के इसमें ऐसे हुआ, उसने ऐसे पेड़ लगाए, उसने ऐसे युद्ध किया, इसको जीता, इससे हारा, इसके बाद में ये, इसके इतने राजा के बच्चे हुए, फिर वो आगे राजा बन गए। वो जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, फिर आगे चल के वो बदल जाएगा, फिर 100 साल बाद में जो इतिहास की किताब है उनमें अलग ही कोई राजाओं का नाम आ जाएगा, पुराने राजाओं को भूल जाएंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज की बात देखिए, लाखों लाखों साल पुरानी बात। और यह नारद मुनि कहते हैं आज भी जब भक्त जो हैं वो चर्चा करते हैं तो तुरंत नारद प्रहलाद महाराज का गुणगान करने लगते हैं। और वो कहते हैं कि जो भी गुण भगवान में हैं, ये नारद मुनि कह रहे हैं कि जो भी गुण भगवान में हैं वो प्रहलाद महाराज के अंदर भी हैं सदैव। देखिए बड़े आश्चर्य की बात है, जिस प्रकार से एक पानी के बूंद में वही गुण होते हैं जो कि सरोवर में हैं या समुद्र में हैं, उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त में वही गुण होते हैं जो कि भगवान के अंदर होते हैं। हालांकि मात्रा में अवश्य बहुत अंतर होता है, परंतु गुण ऐसे ही होते हैं। अभी हम आपसे एक प्रश्न करेंगे, प्रहलाद महाराज कहाँ रहते हैं? थोड़ा सोचिए जवाब देने के पहले, एकदम से बोलिए मत, ठीक है? अच्छा हाँ, वैकुंठ लोक में रहते हैं। ठीक है, एक जवाब। दूसरा जवाब, भगवान के हृदय में रहते हैं। ठीक है, दूसरा जवाब। सब अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं। और कोई बताइए। और एक उत्तर है, सुतल लोक में रहते हैं। ये तीसरा जवाब है। और कोई जवाब? भक्तों के हृदय में रहते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी चार उत्तर आपको मिले, इन चार उत्तरों में से कौन सा सही उत्तर है, भी आप सबको बताना है। पहला उत्तर ठीक है, या दूसरा ठीक है, या तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है, या पहले दो, या दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, पहला और चौथा, बताइए कौन से उत्तर ठीक है। कोई बताइए। हाँ, चौथा। और कोई? वास्तव में चारों के चार बिल्कुल ठीक है, एक साथ ही चारों के चार ठीक है। अब ये कैसे संभव है? ठीक है, हम समझते हैं कि भगवान के हृदय में है, क्योंकि भगवान प्रहलाद का स्मरण हमेशा करते हैं, इसलिए भगवान के हृदय में है। ठीक है, भक्त लोग भी प्रहलाद का स्मरण करते हैं, इसलिए प्रहलाद भक्तों के हृदय में भी है, ये भी ठीक है, मान सकते हैं। परंतु प्रहलाद महाराज वैकुंठ लोक में है और सुतल लोक में भी है, ये कैसे हो सकता है? सुतल लोक कहाँ पे है? कौन सा ट्रेन लेके जाएंगे वहां? कौन से स्टेशन से जाना पड़ेगा? कहाँ है सुतल लोक, कोई बताएंगे? सुतल लोक कहाँ है? सबसे नीचे नहीं। हाँ, कितने भुवन हैं, कितने लोक हैं यहाँ पर भौतिक ब्रह्मांड में? 14 है। और बीच में पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर कौन से हैं? पृथ्वी लोक को क्या कहते हैं? भूलोक। फिर भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, कुल मिलाकर कितने हुए? और इसके नीचे कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल इत्यादि सब हैं। तो ये जो निम्न श्रेणी के लोक हैं, इनको भी बिल स्वर्ग कहते हैं। बिल स्वर्ग, ये भी एक प्रकार का स्वर्ग है। तीन प्रकार के स्वर्ग होते हैं। एक तो दिव्य स्वर्ग, जहां इंद्रदेव निवास करते हैं, और दूसरा है भौम स्वर्ग, जो पृथ्वी लोक के ऊपर ऐसे बहुत ही रमणीय वातावरण होता है, जैसे यहाँ एक प्रकार का स्वर्ग ही है ना, स्वर्ग जैसे वातावरण है। और वहां विशेष करके भारतीय लोगों के लिए तो विदेश जो स्वर्ग है, वो सोचते यही जीवन का उद्देश्य है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पहुंच जाना चाहिए। और तीसरा है ये बिल स्वर्ग। तो बिल स्वर्ग में भी एक सुतल लोक है। सुतल लोक में कौन निवास करते हैं? बलि महाराज निवास करते हैं। बलि महाराज और प्रहलाद महाराज का संबंध क्या है? दादा होते हैं। तो उनके पिताजी कौन है बलि महाराज के? बोलो। विरोचन। और विरोचन के पिता प्रहलाद महाराज। तो बलि महाराज के द्वार पर, लोक के द्वार पर भगवान खड़े हैं द्वारपाल होकर, क्योंकि जब बलि महाराज ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान कृष्ण के चरणों में, जबकि वो वामन देव के रूप में आए थे वहां पर, और 3 कदम जमीन उन्होंने मांगी थी, और 2 कदम से उन्होंने सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था, और 3रा कदम रखने के लिए कोई स्थान नहीं था, तो बलि महाराज ने अपना सर सामने कर दिया था कि 3रा कदम आप मेरे सर पे रखिए, और इसके बदले में भगवान इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने उनको सुतल लोक प्रदान किया था, और कहा था कि आप जाके वहां रहो, कई साल आप राज्य करो, वहां सारे स्वर्गीय भोग आपको उपलब्ध होंगे, आप मेरी सेवा करते हुए वहां पर रहना। और बलि महाराज के आदेश के निवेदन अनुसार भगवान श्री कृष्ण वहां सुतल लोक के द्वारपाल बन गए हैं। तो प्रहलाद महाराज भी वहां रहते हैं सुतल लोक में। ये भौतिक ब्रह्मांड के भीतर है, वैकुंठ लोक क्या भौतिक ब्रह्मांड के भीतर है या बाहर है? बाहर है। वो तो वैकुंठ जगत है, वो तो इस ब्रह्मांड से बहुत परे है। और वैकुंठ जगत में भगवान के भक्त जो है नित्य रूप से निवास करते हैं। तो अब ये बताइए कि प्रहलाद महाराज सुतल लोक में रहते हैं और वैकुंठ लोक में भी रहते हैं, दोनों जगह एक साथ में कैसे रह सकते हैं? अभी आप यहां हैं यमुना के तट पर वृंदावन में, तो आपके घर में नहीं है, आपके दफ्तर में फैक्ट्री में आप नहीं है, कारखाने में नहीं है, है ना? अगर आप वहां हैं तो यहां नहीं हो सकते। तो यह कैसे संभव है कि प्रहलाद महाराज सुतल लोक में है और साथ साथ उसी समय वैकुंठ लोक में भी है? तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जिस प्रकार से भगवान की अचिंत्य शक्ति होती है, जिसके द्वारा वो एक ही समय में अनेक स्थानों में उपस्थित हो सकते हैं, उसी प्रकार से उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं जैसे कि प्रहलाद महाराज, उनके अंदर भी एक क्षमता होती है भगवान की कृपा से, वो भी एक ही समय दो स्थान में उपस्थित हो सकते हैं, अधिक स्थान में भी उपस्थित हो सकते हैं। जैसे हनुमान जी, वो तो वैकुंठ जगत में श्री रामचंद्र जी के साथ सदैव निवास करते हैं वैकुंठ जगत में। साथ साथ में भागवत में यह भी बताया गया है कि वो जम्बू द्वीप में भी निवास कर रहे हैं, अभी भी निवास करते हैं। और भागवत में पंचम स्कंद में हनुमान जी की प्रार्थना भी हम पढ़ते हैं। तो हनुमान जी भी यहाँ हैं और वहां भी हैं। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति से भगवान सब जगह उपस्थित है, हर एक अणु में उपस्थित है, हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है, साथ साथ हर एक ब्रह्मांड में उनको तीन पुरुषों के रूप है, पुरुषत्रय। अभी पुरुषत्रय महाराज आए हैं ना यहाँ पे बेलगाम में, अभी वो गोकुल धाम गए हैं। तो पुरुषत्रय क्या है? ये तीन पुरुष अवतार, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। साथ साथ वैकुंठ, हर एक वैकुंठ लोक में भगवान उपस्थित हैं अपने चतुर्भुज रूप में। साथ साथ फिर गोलोक वृंदावन में अपने आदि रूप मूल रूप में गोविंद श्याम सुंदर के रूप में भगवान विराजमान है। तो भगवान हर जगह उपस्थित है, फिर भी उनका व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता है, फिर भी वो गोलोक वृंदावन में है। जब हम कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, सब जगह उपस्थित है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। भगवान तो गोलोक वृंदावन में है, वहां बांसुरी बजा रहे हैं, अभी भी बजा रहे हैं, अपने लीला कर रहे हैं, साथ साथ सब जगह उपस्थित है। तो यही एक शक्ति अणु मात्रा में भगवान के भक्तों के पास भी हो जाता है। इसलिए यहां प्रभुपाद जी समझाते हैं कि प्रामाणिक शास्त्रों से ये हमें ज्ञात होता है कि प्रहलाद महाराज वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और साथ साथ इस भौतिक जगत में सुतल लोक में भी निवास करते हैं। और ये जो दिव्य गुण है, ये दिव्य जो शक्ति है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अनेक स्थानों में एक समय में निवास कर सकता है, वो ये भगवान का एक और गुण है। और ऐसे गुण भगवान के दिव्य भक्तों में भी आ जाते हैं। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो प्राय भगवान के समान हो जाते हैं, प्राय। जिस प्रकार से राजा के महल में क्या राजा और रानी अकेले रहते हैं? समझ लीजिए कि एक राजा का महल है, राजमहल, बहुत बड़ा महल है, और राजा और रानी वहां पर रहते हैं। क्या वो अकेले दो जन रहते हैं महल में? और कौन रहते हैं? बहुत सारे सेवक भी रहते हैं ना, वो भी तो महल में ही रहते हैं। अगर कोई उस व्यक्ति को पूछे, सेवक को, अरे तुम्हारा पता तो लिख दो, मोबाइल फोन का नंबर लिख दो और तुम्हारा पता भी लिख दो, तो पता क्या लिखेगा? राजमहल। अच्छा, राजमहल में रहते हो, लेकिन क्या वो राजा है? राजा नहीं है, फिर भी राजमहल में रहता है। और जब राजमहल में रहता है तो उसी ऐश्वर्यशाली वातावरण में का भोग करता है जो राजा करता है। तो प्राय राजा के बराबर हो जाता है वो। राजा जैसे ही भोजन खाता है, राजा को जो भोजन मिलता है वो अपने सेवक को दे देता है, तुम भी खाओ। बल्कि एक अमीर घर के अमीर व्यक्ति के घर में कभी कभी कुत्ता है वो भी अमीर व्यक्ति के पलंग में सो जाता है, और कभी जो अब उस आदमी को जगह नहीं होता पलंग पे सोने के लिए, लेकिन कुत्ता को जगह हो जाता है, है ना? फिर वो आदमी जाके सोफा में सो जाता है बाहर ड्राइंग रूम में, बेडरूम में कुत्ता सो रहा होता है। तो ये है सेवक बनने का लाभ। लेकिन हमें अकलमंद होना चाहिए, किसका सेवक बनना चाहिए वो सोचना चाहिए। भगवान का सेवक बनेंगे तो तरह तरह के ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं, तरह तरह के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। हालांकि भक्त ऐसे लाभ को, ऐसे ऐश्वर्य को चाहते नहीं हैं, वो तो केवल भगवान की भक्ति चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं। फिर भी भगवान ऐसे ऋणी हो जाते हैं ऐसे भक्तों के प्रति कि उनको वो सब कुछ प्रदान कर देते हैं। चार प्रकार की मुक्तियां हैं जो वैष्णव चाहते, जो वैष्णवों को प्राप्त होती हैं। कौन से हैं वो चार प्रकार की मुक्तियां, बता सकते हैं? एक है सामीप्य। सामीप्य मतलब क्या है? भगवान के निकट में हम रहते हैं, भगवान के एक पार्षद बन के रहते हैं, समीप रहते हैं उनके, सामीप्य मुक्ति। दूसरा सारूप्य, भगवान की तरह ही एक रूप मिल जाता है। जैसे उद्धव भी भगवान कृष्ण की तरह ही दिखते थे, जब पहली बार वो वृंदावन आए द्वारका से, तो दूर से जब ब्रजवासियों ने देखा उनको लगा कि कृष्ण ही आए हैं, और हलचल मच गई वहां पर, कृष्ण आ गए आ गए आ गए आ गए। जब सामने आके देखा तो अरे ये तो कृष्ण नहीं है, ये उद्धव है। ये दूसरे प्रकार की मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। तीसरी सालोक्य। सालोक्य मतलब भगवान के लोक में निवास करना। चौथी सारष्टि। सारष्टि मतलब भगवान के जो ऐश्वर्य हैं वो प्राप्त कर लेना। वही उदाहरण कि राजमहल में रह के सेवक को भी वही ऐश्वर्य का लाभ मिल जाता है जो राजा को मिलता है। तो इन ऐश्वर्य ऐश्वर्यों में से ये गुण भी हैं, तो भगवान के भक्तों को ये सारे गुण मिल जाते हैं। एक समय पर दो स्थान में चले जाते हैं। तो जब ये विषय चल रहा है तो बातों बातों में एक और हम बात कह देते हैं, बल्कि आपसे पूछ लेते हैं कि आपको पता है कि जो हमारे इष्ट देव होंगे, हमारे इष्ट देव के लोक में हम पहुंच जाएंगे, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृविता भूतान यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनोपि माम, भगवान कहते हैं भगवद गीता में। इसका मतलब क्या है कि जो देवताओं की पूजा करता है वो कहाँ जाता है? देवलोक में जाता है। फिर जो पितरों की पूजा करता है वो कहाँ जाता है? पितृलोक में जाता है। जो भूत प्रेत पिशाचों की पूजा करता है वो कहाँ जाता है? भूतों के पास, भूतलोक में जाता है, भूतों के समाज में चले जाता है। और भगवान कहते हैं जो मेरी उपासना करता है वो मेरे पास चले आता है, मेरे धाम में चले आता है, वैकुंठ जगत में जाता है। फिर भी वैकुंठ जगत में भी भगवान के भिन्न भिन्न रूप हैं। जैसे भगवान के नारायण रूप हैं, भगवान का रामचंद्र का रूप है, भगवान के विभिन्न अवतार हैं वहां पर, और गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण हैं। तो वैष्णव होने के बाद भी अगर कोई श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त बन जाते हैं तो वो वैकुंठ जगत के अयोध्या लोक में चले जाते हैं। अगर कोई भी भगवान नारायण के भक्त बन जाते हैं, अनन्य भक्त, तो फिर वो वैकुंठ जगत में नारायण का संग करते हैं। कोई वृंदावन में रह के अपने चित्त में श्याम सुंदर या कृष्ण की उपासना करते हैं, द्विभुज बांसुरी बजाने वाले कृष्ण, तो वो गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। अच्छा ये बताइए, चैतन्य महाप्रभु की उपासना करने वाले कहां जाते हैं? सोच के बोलिए। जहां इष्ट देव का लोक है वहां जाएंगे। तो श्री कृष्ण का लोक कौन सा है? गोलोक वृंदावन, श्री रामचंद्र का कौन सा है अयोध्या, और वासुदेव कृष्ण जो द्वारकावासी हैं उनका कौन सा है द्वारका। द्वारका वैकुंठ जगत में भी है। जिस प्रकार से द्वारका, अयोध्या, वृंदावन सब आध्यात्मिक जगत में हैं, उसी प्रकार से क्या चैतन्य महाप्रभु का कोई जगह है वहां? हाँ? नहीं है। अभी वैष्णवाचार्य समझाते हैं शास्त्रों के आधार पर कि वहां पर भी एक नवद्वीप है जो गोलोक वृंदावन से मिलकर है, दोनों एक भी हैं और अलग भी हैं। एक साथ में दोनों है लेकिन दोनों दोनों हैं। जैसे कभी एक किताब होता है तो किताब के अंत में भी कोई ऐसे अपेंडिक्स तरह होते हैं जो जोड़े जाते हैं किताब से, तो वो किताब के का अंश है भी और नहीं भी, उसी किताब के अंदर है लेकिन पूरे मुख्य किताब में नहीं, का भाग नहीं माना जाता लेकिन फिर भी है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उस स्थान में नित्य रूप से संकीर्तन करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में क्या करते हैं नित्य रूप से, बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, गौओं को चराने ले जाते हैं वन में, अपने माता नंद बाबा और यशोदा माता और पिता नंद महाराज को आनंद देते हैं। तो ये सब कार्य जो है गोलोक वृंदावन में चलते हैं, ये भगवान कृष्ण के नित्य कार्य हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु भी तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, अवतारी कृष्ण हैं, वो अवतार नहीं हैं। जिस प्रकार के सारे से सारे अवतार जो है श्री कृष्ण से आते हैं और श्री कृष्ण अवतार ही हैं और अन्य अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु कौन है, अवतारी हैं या अवतार हैं? अवतारी हैं, वो भी साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, श्याम सुंदर कृष्ण ही हैं, केवल भाव में अंतर है। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, श्रीमती राधा रानी का भाव और उनकी कांति स्वीकार करके वो कृष्ण आए हैं और उनको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु का नित्य कार्य क्या है बताइए? हरिनाम संकीर्तन। तो जब वो भगवान हैं, अवतारी हैं और उनका नित्य कार्य हरिनाम संकीर्तन करना है, तो उनका भी कोई नित्य स्थान होना चाहिए ना, कि नहीं है? वो उसे भी नवद्वीप कहते हैं, परव्योम नवद्वीप। वहां चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ में सदैव नाम संकीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन का रस का स्वाद लेते हैं। तो जो केवल श्री कृष्ण को मानते हैं वो गोलोक वृंदावन में प्राप्त हो जाते हैं वृंदावन के भाव में। जो चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं वो तो कृष्ण को भी तो मानते हैं, तो वो कहां जाएंगे, उनकी गति क्या होगी? जैसे हम सब गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय तो चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय है, तो इसमें हमें सिखलाया जाता है राधा कृष्ण की उपासना करना, लेकिन कौन सिखलाता है हमें? चैतन्य महाप्रभु सिखलाते हैं। तो हम चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हुए राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, तो हम दोनों की उपासना करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। तो हमारी ऐसे गौड़ीय वैष्णव जो शुद्ध भक्त बनते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की भी उपासना करते हैं, राधा कृष्ण की उपासना भी करते हैं, उनकी गति क्या होगी बताइए? हाँ? पहले नवद्वीप जाते हैं फिर गोलोक जाते हैं, तो जाते आते रहते हैं बीच बीच में। अगर पहले नवद्वीप में जाते हैं और बाद में गोलोक में जाते हैं तो कितने समय के लिए नवद्वीप में रहते हैं, कितने समय के लिए गोलोक में? ऐसे कोई निर्धारित समय है या नहीं है या क्या है? नहीं, जाके देख के आते हैं। अच्छा, ऐसे हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो दोनों जगह जाते हैं एक साथ। जैसे प्रहलाद महाराज एक साथ में सुतल लोक में और वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, उसी प्रकार से ऐसे ऐसे शुद्ध गौड़ीय वैष्णव वो गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा में रहते हैं और नवद्वीप में भी चैतन्य महाप्रभु के साथ नाम संकीर्तन करते रहते हैं। ये भी एक अचिंत्य बात है, हम समझ नहीं सकते, लेकिन जब ऐसे गौड़ीय वैष्णव शुद्ध भक्त हो जाता है तो उसे भी ऐसी शक्ति मिल जाती है, भगवान ऐसे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं दो स्थान में एक जगह एक ही समय में निवास करना। तो यहां प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि क्योंकि एक भक्त अनन्य भाव से पूरी तरह से शुद्ध भक्ति करता है भगवान की, इसलिए वो प्राय ऐसे सारे गुणों को प्राप्त करता है जो भगवान के गुण होते हैं। प्राय, पूरी तरह से तो संभव नहीं है, प्राय। इसीलिए भक्त भी भगवान की तरह ही योग्य हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज इस समय भी दोनों स्थानों में निवास कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो सुतल लोक में वो जाके उनको मिल सकते हैं, लेकिन इससे भला ये है कि भागवत के पन्नों से उनको आप मिलिए, तो एक जगह में रह के भी आप प्रहलाद महाराज को मिल सकते हैं, कहीं शारीरिक रूप से अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नारद मुनि कहते हैं, यम साधु गाथा सदसी रिपवोपी सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किं उतान्ये भवादृशाः। यम साधु गाथा सदसी, साधु गाथा गाथा सदसी मतलब वो सभा जहां पे साधुगण एकत्र होते हैं और कोई उन्नत विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि जब वहां ऐसे कोई सभा होती है जहां भगवान के भक्तों की चर्चा होती है तो अवश्य प्रहलाद महाराज का नाम आता ही आता है। वहां पर प्रहलाद महाराज की चर्चा होगी ही होगी निश्चित रूप से। और नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि हे महाराज, आप तो भक्त हैं ही हैं, इसलिए जब आप किसी सभा में बैठेंगे और भगवत भक्तों के बारे में चर्चा करेंगे तो आप तो प्रहलाद का नाम लेंगे ही लेंगे। जैसे अभी आपने प्रहलाद के बारे में प्रश्न पूछा और आप तो भक्त हैं, लेकिन आपके अलावा जो प्रहलाद महाराज के जो शत्रु हैं, जो देवतागण हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज का जन्म तो एक असुर योनि में हुआ था और असुरों के शत्रु तो देवता हैं, देवताओं के शत्रु असुर हैं। जो जब देव लोक में ऐसे सभाएं होती हैं, सत्संग हुआ करते हैं, आज भी जो देव लोक असुर लोक के शत्रु हैं वहां भी वो प्रहलाद महाराज का गुणगान करते हैं। देखिए, वास्तव में ऐसे कभी ये नहीं देखा जाता कि शत्रुओं के दल में किसी का गुणगान हो रहा हो। जैसे कि दो देशों के बीच में बहुत शत्रुता हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि एक देश में दूसरे देश के नेता का गुणगान हो रहा है, कभी नहीं देखेंगे। लेकिन यहां नारद मुनि कह रहे हैं कि देव और असुर इन दोनों का युद्ध तो अनादि काल से चलते आया है। जब भी जब तक सृष्टि है, ये दोनों के बीच में जो युद्ध है वो चलता रहेगा। परंतु देवलोक में हालांकि असुरों के बारे में उनके मन में बहुत भय होता है, तनाव होता है, फिर भी जब प्रहलाद का नाम आता है तो सभी बड़े आनंद से भक्ति भाव से गुणगान करते हैं प्रहलाद का। तो प्रहलाद का उदाहरण सब जगह दिया जाता है। गुणेर अलम असंख्येयेर, नारद मुनि कहते हैं तो कौन गणना कर सकता है, कौन गिन सकता है प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों को? संभव नहीं है। महात्म्यम तस्य सूच्यते, ऐसे इनके महान गुणों की सूचना इससे देखा जा सकता है कि वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति ही, कि उनकी जो रति है, उनकी जो आसक्ति है भगवान के प्रति, वो बहुत नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। प्रहलाद महाराज के हृदय में स्वाभाविक रूप से बहुत ही तीव्र आसक्ति और भक्ति थी भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण के प्रति। और ये स्वाभाविक इसलिए था क्योंकि उन्होंने पूर्व भी भक्ति की हुई थी। जब तक किसी व्यक्ति ने पूर्व कोई भक्ति नहीं की होगी, तब तक वो यहां इस जन्म में भक्ति में नहीं आ सकता। तो प्रहलाद महाराज, इन्होंने भी बहुत पूर्व जन्मों में भक्ति की है, इसलिए उनको स्वाभाविक रूप से ये आकर्षण भगवान के प्रति प्राप्त हो गया है। और हालांकि इनके दिव्य गुणों की गणना नहीं की जा सकती, फिर भी वो सूचित करती हैं कि ये महान है, महात्मा है। और प्रहलाद महाराज के इस गुण को कि वो उनकी आसक्ति स्वाभाविक है, नैसर्गिक की रति ही, इसका कारण क्या है, ये नारद मुनि अगले श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक कौन सा लिखा है वहां पर? 37वां है ना? ठीक है, अभी इस श्लोक को पढ़ेंगे। नारद मुनि गुणगान कर रहे हैं प्रहलाद महाराज का। समय क्या हुआ अभी? पौने कितने बजे रुकना है हमें? ऐसे तो समय की पाबंदी नहीं है अभी, आज नहीं है, फिर भी थोड़ा ठीक है। तो प्रहलाद महाराज की आसक्ति इस प्रकार से स्वाभाविक क्यों थी, इसका कारण हम इस श्लोक में पढ़ेंगे। तो कृपया हमारे पीछे आप पढ़िएगा। न्यस्त क्रीडान को बालो जड़वत्तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। न्यस्त क्रीडानको बालो जड़वत्तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। न्यस्त क्रीडनको बालः, बाल बाल अवस्था में, बाल्य अवस्था में ये स्वाभाविक है कि क्रीड़ा होनी चाहिए। बच्चों का स्वभाव होता है खेलना, ये खेल रहे हैं, उनके स्वभाव ग्रस्त हैं, स्वभावबद्ध हैं, अपने स्वभाव के अनुसार वो कार्य करेंगे। परंतु प्रहलाद महाराज के बारे में बताया जाता है न्यस्त क्रीडनक बालः, उन्होंने ये सारे क्रीड़ा के कार्य वगैरह छोड़ दिए थे और इन चीजों में, क्रीड़ा में बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे। बचपन से ही जड़ तन मनस्तया, जड़ ऐसे लगते थे कि मानो वो जड़ हैं और बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठे रहते थे, ज्यादा बातचीत नहीं। बच्चे ज्यादा बात करते हैं ना, देख बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, चीखते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं थे, चुपचाप अपनी जगह में बैठते थे। क्यों? तन मनस्तया, तन मनस्तया मतलब कि भगवान में, तत् तत् मतलब भगवान में पूरी तरह से उनका चित्त मग्न रहा करता था। और बैठे बैठे वो क्रीड़ा के बारे में सोच नहीं सकते थे, वो तो केवल कृष्ण के बारे में सोचते थे। इसलिए खेल क्रीड़ा के लिए बिल्कुल उनके मन में कोई स्थान ही नहीं था। और ऐसे श्री कृष्ण उनके ऊपर छा गए थे, इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन नारद मुनि करते हैं। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, जैसे कभी ऐसे कहा जाता है कई किसी के जीवन में परेशानी आती है तो ज्योतिष के पास जाते हैं, वो दिखाते हैं, आप देखिए मेरे जन्म पत्रिका में क्या है, कहता है नहीं, आपका अभी शनि दोष चल रहा है, शनि सवार हो गया है आपके ऊपर, यह राहु का दोष है, केतु का दोष है, यह ग्रह आपके पत्रिका में ठीक नहीं है, मंगल दोष है, जो भी है, इस ग्रह के प्रभाव की वजह से आपके जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए आप जितना पैसे कमाने की चेष्टा करते हो वो निष्फल होता है, या आपके लिए बीमारियां ज्यादा से ज्यादा आती हैं क्योंकि ये ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर है वगैरह। तो ये हैं साधारण इस दुनिया के ग्रह, शनि ग्रह, केतु ग्रह आदि, परंतु ये ग्रह कोई निराला ही है। इस ग्रह का नाम क्या है? कृष्ण ग्रह। कोई ज्योतिष आपको कृष्ण ग्रह के बारे में बताएगा नहीं, किसी को भी पूछिए कि कृष्ण ग्रह का प्रभाव मेरे ऊपर कितना आएगा, नहीं वो तो नहीं मालूम, हम आपको बताएंगे राहु केतु शनि मंगल ये सब बताएंगे, लेकिन कृष्ण ग्रह नहीं। हम सब साधारण व्यक्तियों के ऊपर शनु शनि राहु ये इन सब का प्रभाव पड़ता है, परंतु प्रहलाद महाराज के ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव था? कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह का प्रभाव पूरी तरह से छा गया था प्रहलाद महाराज के जीवन में, गृहीत आत्मा उन्होंने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, और इसलिए दूसरी और कोई चीज उनके मन में नहीं थी, पूरी तरह से उनका मन कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गया था। प्रभुपाद भी यहां विस्तार में तात्पर्य में कहते हैं कि प्रहलाद महाराज परम ग्रह से के प्रभाव में थे, इसलिए वो पूरी तरह से भगवान के धाम के बारे में सोचते थे, भगवान के बारे में सोचते थे, इस जगत के बारे में उनके मन में कोई विचार आता ही नहीं था, उनके मन में कोई स्थान ही नहीं था ऐसे विचारों के लिए, और इसलिए प्रहलाद महाराज की दृष्टि ऐसे थी, न वेद जगत ईदृशम, इसलिए प्रहलाद महाराज को पता ही नहीं चलता था कि जगत कैसे चल रहा है, कोई समझ नहीं पाता है जगत कैसे चले, चल रहा है, हो रहा है, लेकिन कम से कम हम समझने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज तो बिल्कुल ऐसे एक अवस्था में थे कि उनको बिल्कुल पता नहीं था कि कैसे ये सब हो रहा है, क्या चल रहा है, नहीं, वो केवल कृष्ण के स्मरण में सदैव मग्न होते थे। चैतन्य चरितामृत में भी बताया जाता है, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो हाँ अवश्य चीजों को तो देखते हैं, उनके रूप भी भले भला देखते हैं, परंतु वास्तव में वो तो सब जगह केवल श्री कृष्ण को ही देखते हैं, अपने इष्ट देव को देखते हैं, हर चीज को श्री कृष्ण से संबंधित देखते हैं। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज की दृष्टि बिल्कुल शुद्ध थी, भगवान श्री कृष्ण को भूल कर या भगवान श्री कृष्ण को हटाकर कभी भी वो किसी चीज को देखते नहीं थे। ये महाभागवत की दृष्टि होती है। महाभागवत क्या सोचते हैं कि दुनिया में हर एक व्यक्ति शुद्ध भक्त है सिवाय मेरे, वो अन्यों को अच्छा भक्त मानता है, भले आदमी वो भक्त नहीं भी हो उसको श्रेष्ठ भक्त मानता है, और मैं कैसा हूं, मैं तुच्छ हूं, ये महाभागवत की भावना होती है। इसलिए ऐसे महाभागवत कभी प्रचार नहीं कर सकता, प्रचार करना है तो उसे क्या करना पड़ता है, मध्यम अवस्था में उतर के आना पड़ता है, फिर वहां से प्रचार कर सकता है। प्रचार करना है तो भेदभाव करना पड़ता है, भेदभाव नहीं करेंगे तो प्रचार कैसे होगा। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त भी, वो भी तो उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन उनको प्रचार करना था, भगवान की आज्ञा का पालन करना था, उनके गुरु का आदेश था कि जाके अंग्रेजी भाषा में विश्व भर में गीता भागवत का और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करो, तो उन्होंने ऐसे किया, लेकिन प्रचार करने के लिए उनको फिर मध्यम अवस्था में कार्य करना पड़ा। हालांकि वो हैं शुद्ध भक्त, लेकिन वास्तव में जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज, वो सदैव इस चेतना में संतुष्ट रहते हैं और सोचते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। तो प्रहलाद महाराज इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, और कोई विचार के लिए बिल्कुल स्थान नहीं होता था। यहां तक कि जब प्रहलाद महाराज बैठते थे, आसीन पर्यटन अश्नन शयान प्रपिबन ब्रुवन नानुसंधत्त एतानी गोविंद परिरंभितः। आसीन, जब वो बैठा रहा बैठते थे, पर्यटन जब वो चलते थे, अश्नन जब वो खाते थे, शयान जब वो सोते थे, प्रपिबन जब भी कुछ पीते थे, ब्रुवन जब भी कुछ बोलते थे, न अनुसंधत्ते एतानी, ये सब क्या कार्य कैसे हो रहे हैं उनको पता नहीं चलता था। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा जब अपने माँ के गोदी में होता है और माँ सारे उस बच्चे की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, जैसे बच्चे का खाना हो, तो बच्चे को पता नहीं चलता है कैसे मैं खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कैसे पी रहा हूँ, उसका मलमूत्र का कार्य भी चलते रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है, माँ सब संभालती है। ठीक उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज गोविंद परिरंभितः, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में थे, भगवान ने इस प्रकार से उनको आलिंगन किया हुआ था कि प्रहलाद महाराज को बिल्कुल पता नहीं चलता था कि मैं कैसे खा रहा हूँ, कैसे पी रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, सो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। शरीर के कार्य तो यूं ही अपने आप से स्वाभाविक रूप से चलते रहते थे और प्रहलाद महाराज को इनके बारे में कोई चेतना नहीं थी, कोई भावना नहीं थी, बस एक यंत्र की तरह वो थोड़ा बहुत मुंह में लगा देते, कुछ खा देते, कुछ करते, लेकिन उनका चित्त केवल कृष्ण के ऊपर था। जिस प्रकार से बच्चा केवल अपने माँ के गोदी में रहने से संतुष्ट होता है और उसे कोई परवाह नहीं है कैसे खाना, क्या करना, नहीं पीना, कुछ करना, उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज पूरी तरह से अपने प्रिय श्री गोविंद भगवान कृष्ण के आश्रय में सदैव रहा करते थे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना ये बहुत ही शक्तिशाली है। एक क्षण भी हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, इससे बहुत लाभ होता है। तो जो व्यक्ति सदैव भगवान का स्मरण करने के लिए प्रयत्न करता हो, तो वो कितना भाग्यशाली है। शास्त्रों में बताया जाता है, स हानिस्तन महाछिद्रम स मोह सच विभ्रम यन मुहूर्तम क्षण वापि वासुदेवम न चिंतयेत, कि वासुदेव कृष्ण न चिंतयेत, कि अगर वासुदेव या कृष्ण का चिंतन क्षणम वा अपि, एक क्षण के लिए भी अगर हमने नहीं किया, तो सबसे बड़ी हानि हमारे लिए है, सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ी दुर्घटना हमारे जीवन में है। अभी आप किसी को जाके पूछिए, आपके पहचान में कई ऐसे लोग होंगे जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनको जाकर पूछिए कि सबसे बड़ी दुर्घटना आपके जीवन में क्या हो सकती है, क्या जवाब देंगे वो? मेरा सारा पैसा चला गया, ये दुर्घटना सबसे बड़ी दुर्घटना हो गई। कोई और क्या कहेगा? हाँ हाँ, मृत्यु हो गई, या मुझे ये बीमारी हो गई, या क्रिकेट मैच में भारत हार गया, है ना, ऐसा कुछ वो उत्तर देंगे, है ना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा कि सबसे बड़ी दुर्घटना वो होगी जब मैं एक क्षण के लिए भगवान को भूलूंगा? ऐसा कोई उत्तर आपको कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे इसीलिए तो सब लोग भक्तों को पागल कहते हैं ना, थोड़ी कम कारण थोड़ी है, कारण तो उनके लिए पर्याप्त है बोलने के लिए। ऐसा उत्तर कहां मिलेगा आपको? कोई भक्त नहीं, कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा ऐसे, लेकिन ये शास्त्रों का वचन है। शास्त्रों का वचन है कि हमें 24 घंटे भगवान का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के नाम संकीर्तन, नाम जप द्वारा, भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करने के द्वारा, और उनके भक्तों के शरणागत होकर उनकी सेवा करने के द्वारा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हमारा हमारे लिए बहुत दुर्घटना है, दुख की बात है हमारे लिए। और जितनी गंभीरता से हम इस बात को लेते हैं, हम समझ सकते हैं कि उतने ही गंभीर हम भक्त हैं। अगर हमारे माला छूट जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं, एक दिन हम भक्ति से छुट्टी ले लेते हैं और टीवी के सामने दिन भर बैठ जाते हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए या तो कोई सिनेमा देखने के लिए, और बाद में हमें अच्छा भी नहीं, हमें बुरा भी नहीं लगता, ठीक है चलो क्या हुआ, एक दिन ही छुट्टी ली ना, तो हम इतने गंभीर नहीं है। नारद मुनि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि भक्ति का लक्षण वो है कि एक क्षण के लिए अगर भक्त भगवान को भूल जाए तो उसको बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है, बहुत ज्यादा। ये है सच्चा भक्त। तो प्रहलाद महाराज हम सबको सिखला रहे हैं कि सच्चे भक्त का मतलब क्या है। भगवान ने ऐसे भक्तों को इसलिए भेजा है जगत में हम सबको सिखलाने के लिए, और प्रहलाद महाराज भी सिखा रहे हैं कि देखो कैसे 24 घंटे हमें मग्न रहना चाहिए भगवान की भक्ति में। और यहां दुर्भाग्य से आजकल अगर कोई 30-40 साल का आदमी भक्ति करना करने लगे तो लोग उसको क्या कहेंगे, अरे ये थोड़ी उम्र है भक्ति करने की। लेकिन लोग किसी भी उम्र में कहेंगे, 70 साल का आदमी भी हो फिर भी उसको कहेंगे ये थोड़ी उम्र है करने की। हाँ सही बात है, वो सही कहते हैं, ये उम्र नहीं है करने की, उम्र थी 5 साल के समय प्रहलाद महाराज के समय से, ये सही उम्र था करने के लिए, लेकिन आपने नहीं किया इसलिए अब भी नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज को देखिए किस प्रकार से सदैव मग्न चित्त था उनका, कृष्ण भगवान में केंद्रित रहता था। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज सबसे अच्छे उदाहरण हैं भक्त के। बल्कि जब बृहद भागवत अमृत में ये वर्णन आता है कि नारद मुनि जगह जगह जाते हैं ढूंढने के लिए कि सबसे अच्छे भक्त कौन है, इधर 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 उधर जाते 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 इंद्रदेव से होकर फिर वो आगे चलते हैं शिवजी के पास भेजे जाते हैं। शिवजी के शरण में आके कैलाश में शिवजी उनको कहते हैं, नहीं 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 मेरा गुणगान नहीं करना, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और भगवान के तो भक्तों के गुण ऐसे होते हैं कि वो अपना बड़प्पन कभी नहीं करते, अपने आप को हमेशा छोटा प्रस्तुत करते हैं दूसरों के सामने। तो शिव जी ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन देखो अगर आपको सच्चा भक्त जानना है तो आप प्रहलाद के पास जाइए, अभी भी प्रहलाद सुतल लोक में हैं, आप जाइए वहां पर जल्दी से जाइए। प्रहलाद वो भक्त हैं जिनके बारे में भगवान ने बहुत गुणगान किया है, बस स्वयं भगवान प्रकट हुए केवल प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। और प्रहलाद इतने प्रिय हैं भगवान के लिए कि वैसे हम मैं अर्थात शिव जी, ब्रह्मा जी आदि, हम भी इतने प्रिय नहीं हैं भगवान के जितना प्रहलाद हैं प्रिय। और भगवान ने कहा है प्रहलाद को का स्मरण करते हुए कि मेरे भक्त जो हैं वो मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, और भक्तों की उपासना करना मेरी उपासना से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो आप जाइए सुतल लोक में जाइए, प्रहलाद से मिलिए। तो नारद मुनि सीधे सुतल लोक चले जाते हैं, और जाते जाते शिव जी कहते हैं प्रहलाद से, अरे जाते जाते सुन लो, वहां जाके प्रहलाद से बड़े प्रेम से आलिंगन करना, दंडवत नहीं करना, गुणगान नहीं करना, क्योंकि ऐसे गुणगान करोगे तो प्रहलाद महाराज बहुत ही विचलित हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत नम्र हैं, वो कभी नहीं चाहते कि कोई उनको सम्मान दे, और आप जाके उनको ऐसे सम्मान देंगे तो वो फिर आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे, विचलित हो जाएंगे। तो फिर नारद मुनि गए, प्रहलाद महाराज जब नारद मुनि का दर्शन किया तो उनको बहुत आनंद आया, आलिंगन किया। आखिर नारद मुनि जो है वो प्रहलाद के गुरु हैं वास्तव में। तो नारद मुनि अपने शिष्य के पास गए हैं, अपने शिष्य का गौरव सुने हैं शिव जी से कि सबसे श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद हैं। तो वो आए प्रहलाद के पास और प्रहलाद का ऐसा गुणगान करने लगे मानो कि उनको उनके 1000 मुख हैं, और बोलने लगे कि हम सब तो शिव जी ने स्वयं कहा कि बड़े बड़े देवता भी भगवान के सामने नहीं आ सकते, लेकिन आपको देखा जब भगवान ने तो उन्होंने आपको सामने ला लिया और उनके गोदी में बिठाया। जब भगवान नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया, वध करने के बाद हम सब वहां पर आए, भगवान के सामने खड़े हुए, मैं था, शिव जी थे, ब्रह्मा जी थे, सब थे वहां पर, लेकिन भगवान ने किसी की ओर देखा भी नहीं, यहां तक कि लक्ष्मी देवी के पास भी नहीं देखा, लेकिन जब आप वहां पर आए तो तुरंत आपको देखकर उनका चित्त शांत हो गया, क्योंकि उग्र रूप उन्होंने धारण किया हुआ था, बहुत गर्जना कर रहे थे, अभी भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, और बड़े प्रेम से उन्होंने उठा लिया और उनकी गोदी में रख लिया और आपको प्रेम से चाटने लगे। आप तो जानते हैं पशु अपना प्रेम प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं, चाट कर। जब आप गोकुलधाम जाएंगे तो आप देखेंगे गायों को आप मालिश करते रहेंगे तो गाय भी अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। गाय कैसे प्रेम व्यक्त करते हैं, चाट के, वो चाटने लगते हैं। तो नरसिंह देव नर और सिंह, केवल मुख जो है वो सिंह का है, बाकी का शरीर तो मनुष्य का है, नर का है। तो प्रहलाद को गोदी में लिया और गोदी में बैठकर चाट रहे थे उनको। देखो प्रहलाद महाराज का सौभाग्य, स्वयं भगवान ने उनको चाटा। और इस प्रकार से प्रहलाद वहां रहे और केवल प्रहलाद की ओर वो देख रहे थे, किसी दूसरे के लिए की ओर उन्होंने देखा नहीं। इस प्रकार से नारद मुनि आगे आगे चल के गुणगान कर रहे थे। और वामन पुराण में एक वर्णन है, एक घटना का वर्णन है, जो नारद मुनि कहने लगे कि एक बार आप जा रहे थे कहीं एक स्थान पर और स्वयं भगवान वेश बदल कर आपके सामने आए और आपके साथ युद्ध हुआ और आपने भगवान को उस रूप में पराजित कर दिया, हरा दिया आपने, और भगवान ने कहा कि मैं आपके द्वारा जीत लिया गया, मैं हार गया, मैं हार गया। और फिर नारद मुनि उस घटना को याद करते करते भाव विभोर होकर जोर जोर से बोलने लगे, मैं हार गया, मैं हार गया। वो भगवान की बात को दोहरा रहे हैं, मैं हार गया, हार गया। तो फिर प्रहलाद महाराज ने उनको शांत किया और फिर वो कहने लगे, नहीं, मैं अच्छा भक्त नहीं हूं, मेरे से अच्छे और कई भक्त हैं। और आगे नारद मुनि की यात्रा चली। परंतु कहने का मतलब ये है कि प्रहलाद महाराज इतने प्रिय भक्त हैं भगवान के लिए कि भगवान स्वयं वैकुंठ जगत से आए उनकी रक्षा करने के लिए, केवल हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए प्रमुख तो नहीं आए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए वो आए। और विशेष करके जब प्रहलाद और समस्त देवी देवता उपस्थित थे भगवान के सामने, देवी देवताओं को बिल्कुल एक नजर भी नहीं दिया, बिल्कुल प्रहलाद महाराज को ध्यान देकर उनको लिया, उनको पूरा प्रेम किया और उनको आदेश आगे चल के दिया कि आप सिंहासन पर बैठो और राज करो। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने भगवान के आदेश अनुसार राज्य किया। तो नारद मुनि ने कहा कि आप जानते थे कि भगवान की इच्छा ये है, इसलिए आपने राज्य को भी स्वीकार किया केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये आपकी महानता है। और हाँ, सुतल लोक में जो भगवान द्वारपाल बन के खड़े हैं, कोई भले सोचे कि ये इसलिए है कि बलि महाराज शरण में गए थे, लेकिन वास्तव में हे प्रहलाद, मैं जानता हूं, नारद मुनि कहने लगे कि ये केवल इसलिए है कि बलि महाराज का संबंध आपसे था, इसलिए भगवान वहां द्वारपाल में गए, बनकर गए। तो ये गुणगान वास्तव में आपके श्रेय आपको जाता है बलि महाराज से ज्यादा। और शिव जी कहने लगे थे नारद मुनि से, जब नारद मुनि शिव जी के पास थे, कि जब बाणासुर जो कि मेरा उपासक था उसको मैंने वरदान दिए थे और भगवान बाणासुर की हत्या करने आए थे, तो मैंने भगवान से निवेदन किया था और उन्होंने बाणासुर को छोड़ दिया, बचा दिया, मारा नहीं, तो तो वो इसलिए नहीं है कि मैंने निवेदन किया, उन्होंने इसलिए निवेदन किया कि वो प्रहलाद से संबंधित हैं, प्रहलाद के वंशज हैं, इसलिए बाणासुर को भगवान ने बचा दिया। तो देखिए, एक भक्त का संबंध होना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से एक भक्त से संबंधित होता है तो भगवान उसको बहुत प्रेम करते हैं। अगर भक्त का स्नेह किसी एक व्यक्ति के ऊपर होता है और वो भला भक्त न हो, परंतु भक्त ये है जो अच्छा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी भगवान की कृपा अवश्य होगी। तो इसलिए शिव जी कह रहे थे कि भगवान का सुतल लोक में जाके द्वारपाल बनना या बाणासुर को मृत्यु से मुक्त कर देना, ये सब इसलिए हुआ कि वो प्रहलाद से संबंधित थे। तो ये है प्रहलाद के गुण, ऐसे महान भक्त थे प्रहलाद, और उनके गुणों से हम देख रहे हैं और आगे भी वर्णन करते हैं। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता शबल चेतन, क्वचित धसति तच्चिंता लाद उद्गायति क्वचित। जब ऐसे वो भाव में रहते थे, सतत भगवान का चिंतन करते करते, और बाहरी बाह्य ध्यान कुछ था नहीं उनको कि दुनिया में क्या चल रहा है, केवल अपने अंदर की दुनिया में वो रहते थे, तो क्या होता था? क्वचित रुदति वैकुंठ, कभी कभी वैकुंठ चिंता। वैकुंठ चिंता मतलब वैकुंठ का चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन, भगवान का स्मरण करते करते क्वचित कभी कभी रुदति, कभी वो गाद, कभी वो रो देते थे। शबल चेतन, और इस वजह से उनका चित्त जो है वो कभी कभी बीच में भ्रमित हो जाता था, विचलित हो जाता था दिव्य चेतनाओं, दिव्य भाव से। क्वचित हसती तच्चिंता ह्लाद उद्गायती क्वचित, क्वचित हंसते थे कभी कभी, और कभी कभी ऐसी चिंता में आह्लादित होकर कभी कूदते थे, नाचते थे, गाते थे, उद्गायती क्वचित। और प्रभुपाद आगे तात्पर्य में समझाते हैं कि ये जो उपमा है, दृष्टांत है, एक भक्त और बच्चे के बीच में, इसकी आगे यहां पुष्टि की गई है। प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है वो तो संतुष्ट रहता है, जब उसकी माँ उसको छोड़कर चली जाती है तो वो रोने लगता है कि माँ मेरे पास नहीं है, और जब वो माँ चली आती है तो फिर से वो हर्षित होकर बिल्कुल हसमुख चेहरे से वो प्रसन्न होने लगता है। तो उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज जब भगवान श्री कृष्ण से विरह की भावना का अनुभव करते थे, तो वो कभी सोचते थे कि कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण, और ऐसे विरह में वो कभी रोने लगते थे, और जब फिर से वो कृष्ण को देखते थे तो फिर से हर्षित हो जाते थे, आह्लादित हो जाते थे। जब कृष्ण आ रहे हैं वापस, जिस तरह से बच्चा माँ के जाने से रोता है और माँ के आने से हंसता है, कूदता है, उसी प्रकार से भक्त प्रहलाद जो है वो भी ऐसे ही किया करते थे, भगवान को देखने से हर्षित हो जाते थे, और भगवान जब ओझल हो जाते थे तो फिर वो रोने लग जाते थे, विरह में रह जाते थे।
नदति क्वचिदुत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित, क्वचित तद्भावना युक्तस् तन्मयो नुचकारः। नदति क्वचित,
कभी कभी इसी भाव में कभी जोर से कुछ बोलते थे।
विलज्जो नृत्यति क्वचित,
और कभी कभी लाज शर्म को न ध्यान में रखते हुए अचानक नाचने लग जाते थे, नृत्य करने लग जाते थे, बिना कोई कारण के। ऐसे बाहरी कोई बाहर से आदमी देखता रहे, अरे उसे पता नहीं चलेगा, अरे अचानक हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी नाच रहा है, कभी क्या कर रहा है, क्या बात है। जिसकी दिव्य दृष्टि नहीं है वो सोच लेगा ये लड़का पागल है, लेकिन प्रहलाद के चित्त में क्या गुजर रहा था केवल प्रहलाद और भगवान जानते थे।
क्वचित तद भावना युक्त तन्मयो नुचकार।
कभी कभी ऐसे भगवत भावना में वो अपने आप को भगवान के भाव में भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते थे। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई मायावाद दर्शन है। जैसे भागवत के दशम स्कंद में पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण के विरह में गोपियां जो है अपने आप को कृष्ण समझकर कृष्ण लीला करती थी आपस में। एक गोपी कृष्ण बन जाती और दूसरी गोपी जो है पूतना बन जाती और कृष्ण को पूतना का वध करने की लीला वो करते। कभी एक गोपी बकासुर बन जाती और एक गोपी कृष्ण बन जाती। इस प्रकार से कृष्ण के अलग अलग लीलाओं को वो करते। उसी प्रकार से प्रहलाद भी ऐसे प्रेमावेश में ऐसे कृष्ण भगवान की लीलाओं की नकल करते, वैसे अनुकरण करते। लेकिन ये मायावाद दृष्टांत नहीं है। मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि हम सब भगवान हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज और गोपियां केवल ऐसे करते थे क्योंकि उनको ऐसे तन्मय हो जाते थे वो। ये कृष्ण भावना इतनी तीव्र हो जाती थी कि प्रेम में वो एक हो जाते थे। मायावादी लोग जो कहते हैं भगवान से एक होना, उनकी धारणा है कि आत्मा ही भगवान से मिल जाती है और आत्मा का व्यक्तित्व ही खत्म हो जाता है। परंतु इस श्लोक में जो वर्णन है वो इस प्रकार का एकत्व नहीं है। वो प्रेम का एकत्व है, चेतना का एकत्व है, जिससे कि प्रहलाद पूरी तरह से अपने आप को भगवान से जोड़ देते थे प्रेम में। और ऐसे कभी कभी अचानक नाचने लगते, कभी गाने लगते। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी नव योगेंद्र जब महाराज निमि को उपदेश देते हैं तो वो बताते हैं, एवं स्वप्रिय नाम कीर्तो जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यतो रोदति रोति गायति उन्मादव नृत्यति लोकबाह्यः। वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसे व्रत लेता है, बहुत निष्ठावान होकर भगवान का नाम कीर्तन करता है, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने अपने से जो बहुत बहुत प्रिय हैं भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता है, जात अनुराग है, अनुराग मतलब बहुत ही तीव्र आसक्ति होना। ऐसे आसक्ति की वजह से क्या होता है, नाम कीर्तन करते करते द्रुत चित्त है, उसका चित्त जो है वो पिघल जाता है और फिर ऊंचे स्वर में उच्च ही रोदिति, कभी रो देता है, कभी कोई जोर से बोलता है, कभी हंसता है, उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य है, कभी उन्मादित अवस्था में नृत्य करने लगता है और ये परवाह नहीं करता कि बाहर लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। कभी कभी भक्त जब नगर संकीर्तन में जाते हैं तो कभी उनको थोड़ा शर्म आता है, नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरे पहचान वाले लोग वहां पे हैं, उस गली में रहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पहचान के लोग बहुत है, तो फिर बाद में मैं घर में जाऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो भगवान के नाम लेने में कोई शर्माने की बात नहीं है। हरिनाम संकीर्तन करने में पूरा उत्साह से करना चाहिए। हाँ, ऐसे ही कृत्रिम रूप से प्रहलाद महाराज का अनुकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां जो व्यक्ति इस स्तर में स्थित होता है प्रहलाद महाराज की तरह, जैसे महाराज निमि को भी नवयोगेंद्र बता रहे हैं, तो उन्मादव नृत्यति लोक बाह्य है, उसकी स्थिति ऐसी रहती है कि वो नृत्य करने लगता है, कभी परवाह नहीं करता, लोग कुछ कहें भले नहीं कहें भी भले कोई बात नहीं। जब अपने हित का सवाल आता है तो हमें नहीं देखना चाहिए दूसरे लोग क्या कहते हैं। सबसे पहली बात हमें जानना चाहिए कि अपना हित किसमें है। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, है ना, लोगों का काम ही है बोलना, वो तो बोलेंगे, तो हमें परवाह नहीं करना चाहिए। अगर हमें 1 करोड़ रुपए कमाने का भी अवसर मिल जाता आसानी से, और अगर कोई कहता कि लोग क्या कहेंगे, हम क्या बोलेंगे, अरे कहने दो जो कहना है, हम पहले कमा लेते हैं, 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, जब 1 करोड़ हाथ में आ जाएगा तो सब हमारे पास भाग के आ जाएंगे सम्मान देने के लिए। तो जब हम सोचते हैं कि हमारा हित पैसे कमाने में है या कोई प्रगति करनी है संसार में, तो हम ऐसे प्राय देखा जाए तो निर्लज्ज हो जाते हैं।
बाहर देखिए समाज में, आदमी को कमाने के लिए निर्लज्ज होना पड़ता है कभी कभी, क्या नहीं करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, बहुत कुछ करना पड़ता है। और जब अपना वास्तविक हित भगवान की भक्ति करने में है तो क्यों हमें शर्माना चाहिए? शर्माने की कोई बात नहीं है, प्रहलाद महाराज से हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज केवल 5 साल के बच्चे थे, तो हमें भी ये मौका मिला है कि प्रहलाद महाराज के हम पदचिन्हों में चल सकते हैं और प्रहलाद महाराज के उपदेश अनुसार हम आगे चल सकते हैं। आजकल जो है एक तरह का फैशन बन गया है कि जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री या खिलाड़ी, उनका नकल करते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसे बाल को रखते हैं, नकल करते हैं ऐसे लोगों के लिए। तो क्यों ना हम, अगर नकल करना है तो क्यों ना महान भक्तों की करें, ऐसा नहीं कृत्रिम दृष्टि से नहीं, परंतु पद चिन्हों में चलने की बात है। क्यों ना हम ऐसे गुणों का अनुसरण करने का प्रयास करें जैसे प्रहलाद महाराज के अंदर है। प्रयास ही हमारा बहुत कुछ है, जब भगवान हमारे प्रयास को देखेंगे प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं प्रभुपाद जी ने, आप सबको पढ़ने चाहिए। सप्तम स्कंद है, अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रही है तो पढ़िए। प्रभुपाद जी यहां फिर से 2-3 बार यहां दोहरा रहे हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज जब वो देखते थे कि भगवान वापस आ रहे हैं तो हे कृष्ण कह के बोलते थे कि आप कृष्ण आ रहे हैं आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे बच्चा देखता है कि माँ आ रही है माँ आ रही है। तो बहुत ही एक सुंदर संबंध होता है। और प्रभुपाद तात्पर्य में ये भी कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज उसी प्रकार के श्री कृष्ण से कृष्ण की लीलाओं की नकल करते थे जैसे कि ग्वाल बाल वन में जाकर मेंढक की या पक्षियों की या पशुओं की नकल करते थे। क्वचित उत्पुलकस्तूष्णीम आस्ते संस्पर्श निर्वृतः अस्पंद प्रणयानंद सलीलामलिते क्षणः। कभी कभी क्वचित उत्पुलकस्तूष्णीम, बिल्कुल शांत हो जाते थे, उनकी बोली नहीं होती थी और उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उत्पुलुकस संस्पर्श निर्वृतः, ऐसे उनको अनुभूति होती थी कि भगवान के करकमल का स्पर्श उनके सर से हो रहा है और भगवान के स्पर्श से बिल्कुल चुप हो जाते थे और रोंगटे खड़े हो जाते थे। अस्पंद प्रणय आनंद, प्रणय आनंद भगवत प्रेम, प्रणय मतलब प्रेम, तो ऐसे प्रेम के आनंद में क्या होता था, सलिल आम्लीत ईक्षण। सलिल मतलब पानी या आंसू और आम्लीत मतलब आधा बंद होना, ईक्षण मतलब आंखें, तो उनकी आंखें आधे बंद होती थी और अश्रुधारा बहने लगती थी उनकी आंखों से जब वो भगवान के कर कमलों का स्पर्श अनुभव करते थे अपने सर के ऊपर। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, युगायतम निमेशेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण मे, कि जब भगवान से विरह होता है तो एक क्षण भी एक युग के बराबर प्रतीत होता है और उस समय सारा जगत शून्य दिख पड़ता है और विरह में आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है। और क्योंकि प्रहलाद महाराज इस भावना के थे तो जो भी प्रहलाद महाराज के संग में आता था वो भी पावन हो जाता था, शुद्ध हो जाता था। गंगा में स्नान करके ही व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, परंतु एक शुद्ध भक्त को देखने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, तो ऐसे शुद्ध वैष्णव का संग करने की बात तो दूर है।
तो जिन लोगों ने प्रहलाद महाराज का निजी संग किया, हम कल्पना कर सकते हैं कि उनको कितना लाभ हुआ होगा। और फिर नारद मुनि कहने लगते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसके बाद राजा हिरण्यकश्यप ने बहुत ही अत्याचार और अन्याय किया प्रहलाद के प्रति। और महाराज युधिष्ठिर फिर कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि जबकि प्रहलाद इतने इतने सुशील बच्चे थे, इतने सौम्य उनका चरित्र था, उनके बोलने की पद्धति इतनी अच्छी थी, फिर भी हिरण्यकश्यप ने ऐसे क्यों किया, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसके प्रहलाद के बारे में कृपया हमें बताइए कि हिरण्यकश्यप ने ऐसा क्यों किया। हालांकि प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, तो प्रहलाद के बारे में युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछ रहे हैं। अगर हमें शुद्ध भक्त के बारे में जानना है तो दूसरे भक्तों से पूछना चाहिए, न कि उधर उधर से। आजकल बाजार में कई किताबें मिलती हैं भक्तों के बारे में, लेकिन उन्हें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त की किताबों को पढ़ के हमें वास्तविक लाभ मिलेगा। जो सही संप्रदाय में नहीं आते हैं, ऐसे किताबों को, ऐसे किताब लिखने वालों के वचनों को सुनने से, पढ़ने से ज्यादा लाभ नहीं होगा, बल्कि हानि ही होगी। और आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि ये तो स्वाभाविक है कि माता पिता अपने बच्चों से बहुत स्नेह करते हैं, और विशेष करके अगर प्रहलाद जैसे चरित्र और स्वभाव उस बच्चे का हो तो माता पिता तो और भी स्नेह करेंगे। लेकिन हम ये हमने आप कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यप ने बहुत कष्ट दिया प्रहलाद को, तो ये हम कैसे समझ सकते हैं, ये कैसे संभव है कि हिरण्यकश्यप ने इतनी हिंसा की प्रहलाद के प्रति, ये मेरे समझ के बाहर है, तो कृपया हमें समझाइए। तो फिर प्रहलाद महाराज के बारे में आगे नारद मुनि समझाएंगे कि प्रहलाद महाराज को क्यों हिरण्यकश्यप ने इतना सताया और इतनी हिंसा उसके प्रति, उनके प्रति क्यों की, वो आगे कभी और चल के चर्चा करेंगे। आज केवल प्रहलाद के चरित्र के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, और आगे जब कोई अवसर प्राप्त होगा तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। तो अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी हो, तो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है, पता नहीं, प्रहलाद के अवतार बोलते हैं। प्रश्न ये है कि मध्व संप्रदाय में स्वामी राघवेंद्र को प्रहलाद का अवतार मानते हैं, हो सकता है, हम कह नहीं सकते, अंश अवतार भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हमें पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि शास्त्र प्रमाण तो हमने देखा नहीं, लेकिन बोल रहे हैं तो ठीक है, मध्व संप्रदाय की बातें तो प्रमाणिक होती हैं, फिर भी हमें इसके बारे में जानकारी नहीं हुआ, इसलिए हम स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाएंगे। और कोई प्रश्न? आगे कभी चर्चा करेंगे। प्रहलाद महाराज का पूर्व जीवन एक और कथा में चर्चा करेंगे, ठीक है? पहली बार भक्ति की शुरुआत करता है, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में, तो उसका कारण क्या होता है? कारण होता है अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति की पूंजी जब पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है, तब व्यक्ति आकर्षित हो जाता है भक्ति करने के लिए, तब वो भक्ति शुरू कर देता है। कई जन्म इसके लिए लग जाते हैं। जैसे कोई भक्त, कोई व्यक्ति आता है, उसको कभी कभी थोड़ा प्रसाद मिल जाता है, एक आध बार कभी उसने भगवान का नाम लिया हुआ होता है, या थोड़ा कुछ हुआ के थोड़ा कभी दान दे देता है, लेकिन ऐसे भक्ति नहीं करता है, थोड़ा बहुत संबंध रखता है, तो ऐसे उसको अज्ञात सुकृति मिलती है। ऐसे कई जन्मों से बढ़ते 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 एक ऐसे अवस्था तक वो व्यक्ति पहुंच जाएगा जब वो आकर्षित हो जाएगा अच्छी तरह से भक्ति के प्रति, फिर दृढ़ता से भक्ति करने लगेगा। और कोई प्रश्न? प्रश्न ये है कि हिरण्यकश्यप जब अकेले सब कुछ संभाल रहे थे, सारे विभाग, सूर्यदेव का विभाग, चंद्रदेव का विभाग, इंद्रदेव का विभाग, तो अच्छा है ना, भगवान को फिर उनको ही सौंप देना चाहिए था। ऐसा प्रश्न है कि अकेले संभाल रहे हैं तो इसमें क्या है? प्रश्न ये तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें यह जानना चाहिए कि देवता हैं क्यों? क्या भगवान नहीं संभाल सकते सारे ब्रह्मांड को अकेले? आखिर में कौन संभाल रहे हैं? वास्तव में भगवान ही संभाल रहे हैं। देवताओं को केवल उन्होंने एक माध्यम या निमित्त बनाया है बस, लेकिन देवताओं की जो शक्ति है इस ब्रह्मांड के व्यवस्थापन के लिए, वो शक्ति तो भगवान से ही आ रही है। तो जब भगवान अकेले करते हैं और उनको किसी की आवश्यकता नहीं है ब्रह्मांड को संभालने के लिए, तो वो देवताओं को नियुक्त क्यों करते हैं ब्रह्मांड के व्यवस्थापन के लिए? कोई उत्तर दे सकते हैं? जब बहुत अच्छा, सबको सेवा देते हैं क्योंकि देवता भी भगवान के भक्त हैं, उनको भी तो कोई सेवा चाहिए ना। अभी तक इतने शुद्ध नहीं हुआ कि भगवान के धाम में चले जाएं, वो उनको भी भौतिक ब्रह्मांड में रहना है। अभी तक शुद्ध शत प्रतिशत भक्त, शुद्ध भक्त हुए नहीं, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त हैं, तो भगवान सोचते इनको कहीं ना कहीं सेवा तो देना चाहिए। इसलिए कभी कभी ऐसे भक्तों को भगवान कभी देवता बना देते हैं, कभी इस्कॉन में भक्त बना देते हैं, ताकि सेवा का मौका मिले। अभी सेवा करते करते धीरे धीरे नाम जप आदि करके और शुद्ध होके फिर एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और देवता ऐसे लोग हैं जो भक्त भी हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ी भोग वृत्ति भी है। वो कुछ चाहते हैं संसार का भोग करने के लिए, उनको कुछ पद चाहिए, ईश्वर भाव कुछ है, इसलिए उनके वृत्ति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार उनको एक उचित सेवा देते हैं। आप चाहे भी तो भी देवता बन सकते हो, लेकिन हमारा सुझाव है कि सीधे अभी गोलोक वृंदावन के लिए बारे में सोचना चाहिए, देवलोक के बारे में नहीं। और कोई प्रश्न? हाँ, भगवान से प्रेम करना या भक्ति करना दोनों बातें एक है? हाँ, एक ही है। भगवान की भक्ति करके हमें प्रेम प्राप्त होता है, भक्ति अर्थात प्रेम। जब माता पिता अभक्त होते हैं और कभी कभी विरोध भी करते हैं, तो एक आदर्श भक्त को उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे प्रहलाद ने किया? हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हर एक माता पिता वैसे ही बच्चे के साथ करेंगे जैसे हिरण्यकश्यप ने किया, लेकिन प्रहलाद ने क्या किया? कभी हिरण्यकश्यप के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। हालांकि हिरण्यकश्यप ने इतनी हिंसा की प्रहलाद के प्रति, लेकिन प्रहलाद हमेशा प्रेम और सम्मान से व्यवहार करते थे अपने पिता के साथ। ये भक्त के व्यवहार होते हैं, आदर्श। कभी द्वेष नहीं किया प्रहलाद ने। तो भक्त को चाहिए कि वो अपने माता पिता के बारे में भी भगवान से प्रार्थना करे कि उनको वो भक्त बनाए, और माता पिता से बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से व्यवहार करे, उनसे झगड़ा ना करे, उनको अपमानित न करे। ये चाहिए। धीरे धीरे से भगवान की कृपा से वो भी भक्त हो जाएंगे। हर एक जीव अपने कई जन्मों की यात्रा में अमुक स्थान पर पहुंचे हैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति में। तो जबरदस्ती हम किसी को समय के पहले भक्त नहीं बना सकते। भक्त बनना नहीं बनना वो एक जीव और कृष्ण के बीच में है। हम केवल एक निमित्त बन के थोड़ा सा प्रयत्न कर सकते हैं और नम्रता से, बड़े भक्ति भाव से हमें निमित्त होना है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा यांची भक्ति केल्यानंतर कोणत्या धामामध्ये जातात? जगन्नाथ भगवान की भक्ति करने से कौन से धाम में जाएंगे? तो आप उत्तर तो जान ही ले। श्री क्षेत्र, आसक्ति और मोह से कैसे बचना है? अपने आसक्ति को श्री कृष्ण में और कृष्ण के भक्तों में केंद्रित कीजिए तो दुनिया की आसक्ति छूट जाएगी, दुनिया का मोह छूट जाएगा। हमारे स्वतंत्रता को कैसे त्याग करना भगवान की सेवा में? उनके भक्तों के आदेश के अनुसार, उनके भक्तों के आदेश का पालन करना, भगवान के आदेश का पालन करना। प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं, मार्गदर्शन किया है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें इन सारे आदेशों का पालन करना चाहिए और इस तरह से हमारी स्वतंत्रता को हम त्याग कर पाएंगे। आपने बताया कि प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तो हम सब भक्त रह भक्त होकर भी माया के पद चिन्हों में क्यों चल रहे हैं? नहीं चलना चाहिए, चल रहे हैं तो सरल है, ठीक है। हाँ, ये है कि भगवान कहते हैं कि भक्तों के बिना उनको अपने धाम का ऐश्वर्य भी अच्छा नहीं लगता। तो इतने सारे भक्त यहाँ बैठे हैं बेलगाम वृंदावन के क्षेत्र में, तो इतने भक्तों को क्यों नहीं लेके जाते? लेके जाएंगे एक दिन, लेकिन समय के पहले नहीं। तैयारी होना चाहिए, भक्तों को इस काबिल होना चाहिए कि भगवान उनको ले जाएं। जब भक्त तैयार हो जाएंगे तब भगवान ले जाएंगे, समय के पहले नहीं ले जाएंगे। जैसे हम जब तीसरी कक्षा में है तो सीधे कॉलेज में भर्ती हमारे माता पिता नहीं कराएंगे हमको। माता पिता चाहेंगे ठीक है बच्चे को डॉक्टर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेकिन माता पिता क्या तीसरे कक्षा वाले पढ़ने वाले बच्चे को सीधे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करेंगे? नहीं करेंगे। तो माता पिता राह देख रहे हैं, जब ये योग्य हो जाएंगे, 12वीं कक्षा पास करके अच्छे नंबर लाएंगे, तब उनको भर्ती कराएंगे। उसी प्रकार से भगवान राह देख रहे हैं, जब हम तैयार हो जाएंगे तो भगवान अवश्य हमको ले जाएंगे गोलोक वृंदावन। ठीक है, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। एकदम से अंदर मत जाइए।